यज्ञ से मूर्ति पूजा तक विगत परिच्छेदों में जिस पांचरात्र और व्याख्यानक साहित्य का विवरणात्मक वर्णन उपस्थित किया गया है उसकी एक प्रमुख विशेषता मंदिर निर्माण और देव विग्रह की पूजा पद्धति है जिसे सामान्यतया मूर्ति पूजा कहा जा सकता है। मूर्ति पूजा इस देश में कब और कैसे प्रारंभ हुई इस संबंध में विद्वत जन एक मत नहीं है। कुछ विद्वानों के मत में मूर्ति पूजा की पद्धति हमने विदेशियों से ग्रहण की है, संभवतः यूनान और मिश्र दो ऐसे प्राचीन देश हैं जो बहुदेववाद में विश्वास रखते थे और देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा करते थे। इन देशों से जब भारतीय संपर्क बढ़ा तो इनकी प्रतिमा पूजन की प्रथा भी इस देश में आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पेज 152 चैप्टर इंडिया एंड ग्रीन। इट इज एन इंटरेस्टिंग थॉट दैट इमेज वर्शिप केम टू इंडिया फ्रॉम ग्रीस। द वैदिक रिलीजन वॉज अपोज्ड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडल एंड इमेज वर्शिप। ग्रीक आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान एंड राउंड अबाउट द फ्रंटियर वॉज स्ट्रॉन्ग एंड ग्रेजुअली इट हैड इट्स डे। और सर्वप्रथम जैन मतानुयायियों ने इनके अनुकरण पर अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां मंदिरों में प्रतिष्ठित की। जैन धर्म वालों से मूर्ति पूजा की यह पद्धति शैवों भागवतों और महायानी बौद्धों ने ग्रहण की। कुछ विद्वानों की सम्मति में गणेश देवता चीन और उसकी संस्कृति से प्रभावित अन्य देशों से आए। शिव को कुछ विद्वान सेमिटिक देवता मानते हैं। शीतला देवी द्रविड़ संस्कृति की देवी मानी जाती हैं और नाग पूजा तथा कुबेर पूजा को यक्ष संस्कृति की देन कहा जाता है। अन्य विद्वान इसके विपरीत धारणा रखते हैं। उनकी सम्मति में मूर्ति पूजा विदेशी नहीं इसी देश के मस्तिष्क की उपज है। इस संबंध में हम भी अपने विचार प्रकट कर देना आवश्यक समझते हैं जिससे विद्वान आलोचना प्रत्यालोचना द्वारा किसी निर्णय पर पहुंच सके। किसी के विचारों से सर्वांशतः सहमत होना प्रत्येक विद्वान के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी विचार सागर का मंथन कुछ रत्न तो हाथ में रख ही देता है। भारतीय ऋषि श्रवण मनन और निधिध्यासन द्वारा ब्रह्मांड के साथ जिस बुद्धि योग का प्रयोग करते थे उससे उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हो जाते थे। इसी प्रणाली पर चलते हुए उन्होंने सृष्टि में कार्य करने वाले रित और सत्य दो नियमों का पर्यवेक्षण किया। इन्हीं नियमों के अनवरत अनुशीलन तथा सतत संपर्क से प्रभावित हो उन्होंने यज्ञ संस्था की नींव डाली। वैदिक वाङ्मय में ऐसे अनेक सूत्र उपलब्ध होते हैं जो सृष्टि के मूल में विद्यमान याज्ञिक प्रक्रिया की सूचना देने वाले हैं। भगवान कृष्ण ने गीता 3:10 में सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य घ्वम् एष वो सृष्ट कामधुक् कहकर इसी तथ्य को प्रकट किया है। ऋग्वेद भी यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त कहकर सृष्टि की सर्व प्रधान क्रिया यज्ञ का उल्लेख करता है। यज्ञ के इस प्रथम धाम को समझकर ही ऋषियों ने नाना प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों को जन्म दिया था। ये अनुष्ठान बढ़ते बढ़ते विराट जगत बाल की सीमा तक पहुँच गए। शतपथ ऐतरेय गोपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों में तथा श्रौध सूत्रों में यज्ञ के इस विविध क्रियाकलाप के दर्शन होते हैं। जो यज्ञ भौतिक रूप धारण करते वे भी अपने प्रारंभिक स्वरूप में आध्यात्मिक भावनाओं के प्रतीक थे। वे कालांतर में प्रतीक न रहकर स्वयं भौतिक सत्य बन गए। भारतीय ऋषियों का ध्यान इस परिवर्तन की ओर गया था। शतपथ ब्राह्मण में ही पांचरात्र यज्ञ के संबंध में जो कथा आती है वह स्पष्ट रूप से परिवर्तन की इस दिशा की ओर इंगित करती है। यज्ञों का भौतिक रूप अथवा द्रव्यमय रूप अपनी सीमा का उल्लंघन करता हुआ हिंसा प्रधान हो चला था। ब्राह्मण काल के ऋषि उसे वास्तविक अध्वर अर्थात अहिंसा प्रधान रूप देना चाहते थे। संभवतः कुछ समय तक पशु मांस लिप्सु याज्ञिकों और सात्विक प्रवृत्ति वाले अहिंसा प्रधान ऋषियों में पर्याप्त संघर्ष रहा होगा। महाभारत के नारायणीय उपाख्यान में जो द्वंद्व राजा वसु परिचर और उनके पुरोहित बृहस्पति के बीच इसी प्रसंग को लेकर उपस्थित हुआ है वह भी इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। यही कारण है कि स्वयं वेदानुयायियों में वेद के नाम पर दो दल हो गए, प्रथम प्रवृत्ति मार्गी और द्वितीय निवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी हिंसा प्रधान यज्ञों से चिपके रहे, परंतु निवृत्ति मार्ग वालों ने कतिपय नवीन पंथों की उद्भावना की। वैष्णवों का वैखान संप्रदाय निवृत्ति पथगामी है, ऐसा हम पीछे लिख चुके हैं। वेद मंत्रों का वास्तविक अर्थ और उनका साक्षात दर्शन परवर्ती ऋषियों की बुद्धि को अग्राह्य हो चला था। महर्षि अरविंद ने वेद रहस्य के प्रथम भाग में ऐसा संकेत किया है कि उपनिषद काल के ऋषि भी वेद के सत्य अर्थ से बहुत दूर जा पड़े थे। उन्होंने वैदिक ऋषियों के अनुभूतियों तक पहुंचने के लिए सबल प्रयास किया है, फिर भी उन्हें साक्षात्कृत धर्मा नहीं कहा जा सकता। निरुक्तकार ने भी ऐसे असाक्षात्कृत धर्मा व्यक्तियों का उल्लेख किया है जो वेदार्थ प्रणाली तक को विस्मित कर चुके थे। निवृत्ति पदगामियों ने वेद के नाम पर चलने वाले हिंसा प्रधान यज्ञों का बहिष्कार किया, पर वे जनता को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, यह उनके सामने एक समस्या रही होगी। यज्ञ निर्माण की जो विधियां ब्राह्मण ग्रंथों तथा और सूत्रों में वर्णित हुई हैं, वे विपुल विवरण और अमित अलंकारों से संयुक्त हैं। संभवतः दूसरे पक्ष वालों ने इसी प्रकार के अलंकृत विधानों को सर्व सामान्य जनता के आकर्षण का उपयुक्त साधन समझा होगा और उन्हें अपनाकर अपने समक्ष उपस्थित समस्या का समाधान किया होगा। वैष्णव धर्म का प्राचीन रूप प्रमुखतया निवृत्ति प्रधान है। जिस वैखानस आगम और धर्म के विषयों का विवरण हम पीछे देख चुके हैं, वह इसी विशेषता को प्रकट करता है। वैष्णवों की दूसरी शाखा पांचरात्र संहिताओं से संबंध रखती है। महाभारत एक शाखा को प्रवृत्ति लक्षण वाली कहता है, परंतु इसमें भी हिंसा प्रधान यज्ञों की नहीं अहिंसा भाव की ही प्रधानता रही है। वैष्णवों की दोनों शाखाओं में वैदिक कर्मकांड का वह प्रवृत्ति मार्ग के स्वरूप दृष्टिगोचर नहीं होता जो बृहस्पति जैसे देव पुरोहित तक को हिंसा के लिए प्रेरित करता है। ब्राह्मण ग्रंथों के यागिक विवरणों से वैष्णवों ने अपने संप्रदाय के आकर्षण के लिए जो उपकरण संग्रहित किए, वे मंदिर निर्माण और प्रतिमा प्रतिष्ठान के रूप में दिखाई दिए। यज्ञों के हिंसामय उपकरणों का उन्होंने सर्वथा परित्याग कर दिया और द्रव्यमय यज्ञों की ओर से भी अपना हाथ खींच लिया। अहिर्बुदन तथा ईश्वर संहिताओं में जो पांचरात्र साहित्य के अंतर्गत हैं और वैखानस आगम में मंदिर निर्माण संबंधी जो विस्तृत विवरण आते हैं और प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा एवं पूजा विधि से संबंधित जिस विस्तृत क्रियाकलाप का वर्णन है, वह बहुत कुछ उसी रूप का है जिस रूप का यज्ञ संबंधी विवरण हमें ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध होता है। अतएव हमारी सम्मति में मूर्ति पूजा का मूल रूप यज्ञों के ही अंतर्गत है। यज्ञ संस्था ही विकसित होती हुई अपनी हीनताओं के परित्याग एवं अलंकृत प्रसाधन सामग्री के ग्रहण द्वारा मूर्ति पूजा के रूप में परिणत हो गई। यद्यपि प्राचीन हिंसक पुरोहितों के समान आगे चलकर शक्ति मतानुयायियों ने अपने इष्ट देवी कालिका की मूर्ति पर पशु बलि चढ़ाकर मूर्ति पूजा को भी हिंसा प्रधान यज्ञ की वेदी की भांति रक्त रंजित कर दिया, फिर भी मूर्ति पूजा का वैष्णव रूप परम सात्विक और अहिंसामय ही रहा है। यज्ञ संस्था स्वयं सृष्टि के निराकार रित एवं सत्य नियमों का साकार एवं मूर्त रूप है। हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक वस्तु के अंतस्थल तक पहुंचने और उसे पहचानने का अभूतपूर्व प्रयास किया है। जहां उन्होंने किसी मूर्त सत्ता के अंतस में विद्यमान निराकार व अमूर्त तत्व के दर्शन किए हैं, वहां उन्होंने अमूर्त को मूर्त रूप में परिणमित तथा उसकी नाना शाखाओं में फूटते हुए विशाल रूप को भी देखा है। किस प्रकार ओंकार अक्षर से 49 स्वर एवं व्यंजन निकले और उनसे किस प्रकार वाङ्मय का विस्तार हुआ, ऋत से सत्य, प्राण से रई, नाद से बिंदु और नाम से रूप की किस प्रकार समानांतर सृष्टि हुई, शब्द के साथ अर्थ और अर्थ के साथ शब्द किस प्रकार समकक्ष गति से चलते हैं, किस प्रकार मुख से बाहर आने वाला अक्षर ध्वनि तरंगे उत्पन्न करता हुआ आकृति विशेष को जन्म देता है और आकृति के साथ वह सतरंगी लहरों से किस प्रकार अपना रंग ग्रहण करता है, विश्व की नाना मूर्त शक्तियाँ किस प्रकार अपने देवता रूपी अर्थों से संबंध रखती हैं, इन विषयों की जितनी सूक्ष्म खोजबीन हमारे ऋषियों की पारदर्शनी बुद्धि ने की है, उतनी संभवतः अन्य किसी ने नहीं। मूर्तियों के निर्माण के मूल में भी यही प्रक्रिया प्रारंभिक समय में प्रचलित रही होगी। हम अपनी कल्पना अथवा पार्थिव शक्ति द्वारा जिन गुणों का आभास पाते हैं और जिन दिव्य शक्तियों का उनके सगुण परंतु अमूर्त रूप में अनुभव करते हैं, उनका एक रूप ही कालांतर में हमारे सामने बन जाता है। कहना यूँ चाहिए कि वाणी जिस गुण का नाम विधान करती है, नेत्र उसी का एक रूप विधान भी प्रस्तुत कर लेते हैं। इस प्रकार अनयन गिरा और अवाक नेत्र परस्पर सहयोगी बनकर ऐसा कार्य संपादित करते हैं जो अंतस को बाह्य से और बाह्य को अंतस से एक कर देने वाला है। अतः हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि वैदिक ऋषियों की जिस बुद्धि ने सृष्टि में निहित यज्ञ की अमूर्त भावना को अलंकृत वेदी संपन्न तथा विविध प्रकार के सुसज्जित कुंडों से युक्त साकार यज्ञ संस्था का रूप प्रदान किया, उसी बुद्धि ने कालांतर में यागिक विवरणों के आधार पर उन्हीं के स्वरूप की व्याख्या करने वाले और उन्हीं की अलंकृतियों को विकसित रूप प्रदान करने वाले देवताओं को भी जन्म दिया। कोई भी संस्था काल के कराल चक्र में पड़कर अपने मूल रूप से संबद्ध नहीं रह पाती। देवालयों तथा देव विग्रहों का मूल रूप भी इसी आधार पर परवर्ती समय में नष्ट हो गया। हम मूल के महत्व को छोड़कर पल्लवों को ही सब कुछ समझने लगे। जो मूर्ति हमें अपने पीछे नहीं दिव्य गुणों की ओर ले जाती थी, व्यक्त से हम जिस अव्यक्त को का बोध प्राप्त करते थे, वह हमारी अंतर संपत्ति से निकल गया। स्पिरिट के स्थान पर हम फॉर्म को महत्व देने लगे, आत्मा के स्थान पर हम शरीर के पुजारी बन गए। इतिहास का यह एक कठोर सत्य है। इस सत्य का उद्घाटन समय समय पर वैष्णवाचार्य स्वयं करते हैं। गीता का निम्नांकित श्लोक इस सत्य की उच्च स्वर से घोषणा कर रहा है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् 7:24। मैं अव्यक्त अर्थात अरूप हूँ, पर मूर्ख मनुष्य मुझे साकार देहधारी समझते हैं। मेरे नित्य और सर्वोत्तम स्थिति को वे नहीं जानते। श्रीमद् भागवत के 3rd स्कंध में इसी भाव को इस प्रकार कहा गया है। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमेश्वरम् हित्वार्चाम् भजते मौर्या भस्मन्नेव जिहोदितः 29:22। जो व्यक्ति सब भूतों में विद्यमान मुझ ईश्वर को छोड़कर अपनी मूर्खता से केवल प्रतिमा की पूजा करता है, वह मानो राख में आहुति डाल रहा है। अभ्यज्ञ संस्था से विशिष्ट मूर्तियों का निर्माण किस प्रकार हुआ, इस बात पर भी किंचित विचार कर लेना चाहिए। यज्ञों के विवरणों में कहा गया है कि सर्वप्रथम यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए भूमि का शोधन करना चाहिए। भूमि शोधन के पश्चात इष्टिकाओं का निर्माण और चयन किया जाता था। निर्माता की बुद्धि को मंत्र जाप द्वारा भावित कर पवित्र किया जाता था। इष्टिकाओं से त्रिकोण, तांबूलाकार, समकोण, वर्गाकार, वृत्ताकार, पद्माकार तथा अन्य प्रकार के कुंडों का निर्माण होता था। तदनंतर वेदी बनती थी और वेदी पर विविध प्रकार की अलंकृतियाँ रची जाती थी। प्रणव अर्थात ओम अक्षर को भी चित्रों द्वारा वेदी पर चित्रित किया जाता था और सौर मंडल के ग्रहों को तथा ब्रह्मांड की आकृति को वेदी पर अक्षत आदि द्वार अंकित कर ब्रह्मांड के विधान को समझाने का स्तुत से प्रयत्न किया जाता था। किसी न किसी रूप में ये बातें आज भी परंपरा द्वारा प्राप्त यज्ञ वेदी की रचना में प्रकट की जाती हैं। हमारे घरों में मांगलिक अवसरों पर जो स्वस्तिका का चिन्ह द्वार दीवारों पर बनाया जाता है, वह उसी ओम अक्षर का प्रतीक है। यह भी असंभव नहीं है कि जिस गणेश का पूजन समस्त पौराणिक कृतियों के प्रारंभ में होता है, वह अपने मूल रूप में ओंकार की ही मूर्ति रहा हो। श्री कृष्ण की जिस त्रिभंगी मुद्रा का दर्शन हम प्रायः चित्रों में करते हैं, वह ओंकार का ही विकसित रूप है। ओंकार से ही इस विराट ब्रह्मांड की रचना हुई है, अतः इस मुद्रा को विराट ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप भी कहा जा सकता है। ओंकार तांत्रिकों में ओम रूप में लिखा जाता है। कुछ विद्वानों की सम्मति में ओंकार लेखन का यही रूप प्राचीन है और अरबी लिपि में लिखित अल्लाह इसी का प्रतिरूप है। यज्ञ में सामग्री घी मिष्टान्न आदि की जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनसे हवन कुंड के अंदर पर्वत शिखर की भांति ऊपर को उठती हुई एक पिंडी बन जाती है। इस पिंडी का आकार शिवलिंग के समान है। महादेव की मूर्ति की कल्पना इसी पिंडी के आधार पर की गई है। शिव की योगेश्वरी मूर्ति जिसकी जटाओं में गंगा और ग्रीवा में सर्पों की माला है, परवर्ती काल में इसी यज्ञ के रूप से निर्मित की गई है। यज्ञ कुंड से धधकती हुई ज्वाला की जो लपटे ऊपर को उठती हैं, वे सर्प और उसके फन को मुद्रित करती सी प्रतीत होती हैं। घी की जो आहुतियाँ इन लपटों के ऊपर पड़ती हैं, वे आकाश से उतरती हुई और शिव की जटाओं में निवास करती हुई देवापगा गंगा की जलधाराएं हैं। महादेव पूजा का मूल रूप लिंग पूजा ही है, जो एक ओर यज्ञ की पिंडी का प्रतीक है और दूसरी ओर शून्य का प्रतिरूप है, जिसे ऋग्वेद के नासदीय सूत्रकार ने सत और असत दोनों से विलक्षण कहा है और जो गणित शास्त्र का बीजाक्षर है। महादेव की इस लिंग मूर्ति का जिस वेदी पर समासीन किया जाता है, उसकी आकृति यज्ञ कुंड के समान ही होती है। हवन कुंड की परिखा जो वेदी के ऊपर बनी होती है और जिसमें अदिते अनुमन्यस्व आदि मंत्रों द्वारा चारों दिशाओं से जल डालते हैं, वही शिवलिंग के चारों ओर बनी हुई जलधारी या परिखा है। शिवलिंग के ऊपर डाला हुआ जल इस वेदी के जिस द्वार से बाहर जाता है, वह यज्ञ वेदी का घृत डालने वाला स्थान है। मंदिरों का निर्माण भी इसी यज्ञ वेदी का अनुकरण करता है। मंदिर के अंदर जिस सिंहासन पर मूर्ति प्रतिष्ठित की जाती है, वह सिंहासन कुंड है और उस कुंड में सामग्री की पिंडी सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति है। यज्ञ वेदी की परिखा मंदिर की परिक्रमा या प्रदक्षिणा वाला पथ है। वेद ने ऋत और सत्य नाम की जिन दो शक्तियों का उल्लेख किया है, वही अग्नि और सोम के रूप में वेद में ही वर्णित हुई है। पुराणों ने इन्हीं को रुद्र और विष्णु की संज्ञा प्रदान की है। विष्णु सोम सत्ता या स्थिति के प्रतिनिधि हैं, तो रुद्र अग्नि के। पुराणों ने इसीलिए विष्णु को रक्षक और रुद्र को अग्नि के अंतिम गुण संहारक का रूप दिया है। रुद्र की आठ मूर्तियाँ आठ वसुओं की प्रतिनिधि हैं, परंतु रुद्र को साक्षात अग्नि का ही रूप माना जाता है। अग्निहोत्र के अंत में वसु पवित्र मसी शतधारम आदि मंत्र द्वारा सामग्री की बनी हुई पिंडी पर जो सहस्त्र धाराओं में घी डाला जाता है, वही महादेव के लिंग के ऊपर लटके हुए कलश से टपकती हुई सहस्त्र बूंदे हैं। मंत्र में आठ वसुओं को पवित्र करने वाले अग्नि देव हैं, तो रुद्र की आठ मूर्तियों के बीच में बैठी हुई रुद्र की साक्षात मूर्ति को पावक पवित्र कारक अग्नि कहा ही जाता है। यज्ञ के साथ जो पशु बांधा जाता है वही महादेव का वृषभ है। निरुक्त में त्रिधा बद्धो वृषभो रोर वीति की व्याख्या में शब्द को भी वृषभ की संज्ञा प्रदान की गई है। पौराणिकों में जिस पंचायतन पूजा का प्रचार है उसमें विष्णु शिव दुर्गा सूर्य और गणेश की मूर्तियां होती हैं। रामायण में भी चारों भाइयों के साथ सीता की मूर्ति ही पंचदेवों के समकक्ष है। पंचदेव भी विश्व की उदात्त शक्तियों के प्रतीक हैं और उनकी मूर्तियों की कल्पना करके गुणों के आधार पर की गई है। पांच रात्रों का चतुर्व्यूह भी सांख्य के प्राकृतिक तत्वों का ही प्रतिरूप है। आर्य ऋषियों के चिंतन और भावन का मुख्य लक्ष्य वह सूक्ष्माति सूक्ष्म अंतिम तत्व रहा है जिसका नाम और रूप द्वारा इस जगत में व्याख्यान हुआ। अत ब्रह्मैव परार्धम अगच्छत् तत् परार्धम गत्वा एक्षत् कथम नु इमान् लोकान् प्रत्यवेयामिति तद्द्वाभ्यामेव प्रत्यवैध रूपेण चैव नाम्ना च शतपथ 11:23। तथा जो अव्याकृत से व्याकृत और अनिरुक्त से निरुक्त बना, मूल तो वही है और वही अक्षर तथा अविनाशी सत्ता है। मूर्तियां नाम रूपात्मक जगत के अंदर आती हैं और अपने विनश्वर रूप को लिए हुए उसी अविनश्वर सत्ता की स्तुति करती हैं। इन मूर्तियों का तथा इस निखिल मूर्त ब्रह्मांड का पर्यवसान उसी अविनश्वर सत्ता में होता है। यह मर्त्य उसी असमर्थ में विश्राम पाता है। वैदिक शब्दों में असमर्थ्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, यह मरण धर्मा विनश्वर शरीर एक दिन अमृत बनता है और ब्रह्म के साथ आनंद का उपभोग करता है। पर यह मर्त्य अमृत कैसे बनेगा, यही विचारणीय है। वेद कहता है मर्त्य अपने परिमाण में चाहे जितना विशाल हो उस महान के आगे वह अणु रूप ही है। यह अणु जब उस महान का संस्पर्श करेगा तभी ब्रह्म अर्थात बड़ा बनेगा। अपनी संकीर्णता का परित्याग करके अहंता की स्वल्प सीमा का उल्लंघन करके जब यह असीम और अनंत अर्थात धूमा बनेगा उसी दिन यह अमृत बन सकेगा। इसके पूर्व तो कालिदास के शब्दों में मरणम प्रकृति ही शरीरिणाम, इसे मरना ही मरना है। पर उस अंतिम दिन का मरण भी कितने सौभाग्य और समृद्धि का परिचायक होगा जिस दिन मरण की सीमा को अतिक्रांत करता हुआ अमृत में प्रवेश करेगा। मानव जिस दिन मूर्ति पूजा के द्वारा परम दैवी तत्वों तथा गुणों की आराधना करने लगेगा, दूसरे शब्दों में आकार से यज्ञ के त्याग रूपी भाव में प्रवेश करेगा और अंत में यज्ञ से यज्ञ रूप प्रभु तक पहुँचेगा, उसी दिन वह कल्याण का केंद्र बन सकेगा। भागवत भक्ति का स्वरूप। नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, रूप गोस्वामी के उज्ज्वल नील मणि तथा भक्ति रसामृत सिंधु और मधुसूदन सरस्वती का भक्ति रसायन भक्ति के सिद्धांत पक्ष का तात्विक विवेचन करने वाले ग्रंथ हैं। अंतिम तीन 16वीं शताब्दी की रचनाएं हैं और प्रथम दो संभवतः गुप्त साम्राज्य काल तक बन चुके थे। नारद ने अपने भक्ति सूत्रों में शांडिल्य का नाम लिया है, अतः शांडिल्य भक्ति सूत्र नारद भक्ति सूत्र से पूर्ववर्ती है। नारद ने सूत्र संख्या 16, 17 तथा 83 में ब्रह्म कुमार सनक सनंदनादि व्यास शुक शांडिल्य गर्ग विष्णु कौंडिन्य शेष उद्धव आरुणी बलि विभीषण आदि को भक्ति के आचार्य रूप में मान्यता दी है। शांडिल्य ने काश्यप बादरायण और जैमिनी के नाम सूत्र संख्या 29, 30 और 61 में दिए हैं। इससे सिद्ध होता है कि नारद और शांडिल्य से भी पूर्व कई आचार्य हुए हैं जिन्होंने भक्ति के सिद्धांत पक्ष का विवेचन किया होगा, परंतु उनके ग्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं है। व्यास विरचित भागवत में इस विषय की सामग्री विद्यमान है जिसका विवेचन हम इस अध्याय में कर रहे हैं। उपलब्ध आर्ष ग्रंथों में नारद ने अपने भक्ति सूत्रों में पूर्ववर्ती आचार्यों के मत का समावेश कर दिया है, अतः प्रमाण रूप में उसे गृहित किया जा सकता है। उज्ज्वल नीलमणि तथा भक्ति रसामृत सिंधु बहुत परवर्ती ग्रंथ हैं। उज्ज्वल नीलमणि में राधा कृष्ण संबंधी प्रेम पर आधारित श्रृंगार रस को रूप गोस्वामी ने संपूर्ण रूप से भाव विभाव आदि के अंग सहित भक्ति रस के पद पर प्रतिष्ठित किया है। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का गंभीर विवेचन पाया जाता है। उज्ज्वल नीलमणि पर जीव गोस्वामी की टीका महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ग्रंथ पर अपने समय की प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ता है। ये ग्रंथ भी उसका अपवाद नहीं है। पिछले दोनों ग्रंथ उज्जवल नीलमणि तथा भक्ति रसामृत सिंधु महाप्रभु चैतन्य के वैष्णव संप्रदाय की गौड़ीय शाखा के सिद्धांतों से प्रभावित हैं। प्रथम दो सूत्र ग्रंथों पर भागवत धर्म के प्रारंभिक रूप का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इन सूत्र ग्रंथों में गौड़ीय संप्रदाय में प्रचलित भक्ति रस की सर्वांग पूर्णता पर पहुँचे हुए राधा कृष्ण के श्रृंगार का, जिसे उज्जवल या मधुर रस भी कहते हैं, अभाव है। इसी प्रकार नारद भक्ति सूत्र में वर्णित रूपा शक्ति और कांता शक्ति श्रीमद् भागवत में वर्णित नवधा भक्ति के अंतर्गत नहीं आती। श्रीमद् भागवत की नवधा भक्ति के पाद सेवन, अर्चन और वंदन के अनुष्ठान विधि वैदिक काल की भक्ति में दिखाई नहीं देती। सूत्र ग्रंथों में वर्णित तथा श्रीमद् भागवत में प्रतिपादित भक्ति से ज्ञान और कर्म की अवर स्थिति अथवा हेयता भी वैदिक भक्ति की विशेषता नहीं जान पड़ती। प्रत्येक युग अपने विशिष्ट मान्यताओं एवं अभिव्यक्तियों को लेकर आता है और वे तत्कालीन साहित्य द्वारा आत्मसात कर ली जाती हैं। अतः भक्ति का विवेचन करने वाले इन ग्रंथों पर भी अपने समय की मान्यताओं का अवश्यंभावी प्रभाव पड़ा है। वेद त्रय में ज्ञान, कर्म एवं भक्ति तीनों साधन एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी समन्विति मानव जीवन के चरम लक्ष्य को सिद्ध करने वाली है। ज्ञान हमें लक्ष्य का बोध कराता है, कर्म उस लक्ष्य तक पहुँचाता है और भक्ति उस लक्ष्य में तल्लीन कर देती है। ज्ञान कर्म और भक्ति को प्रदीप्त करता है। भक्ति ज्ञान और कर्म का उद्रेक करती है। कर्म अन्य दोनों के निष्पादन में सहायता देता है। अतः तीनों की क्रम परक नहीं प्रत्युत समन्विति लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानी गई है। गीता में भी ज्ञान, कर्म एवं भक्ति का त्रय तो विद्यमान है, यद्यपि भक्ति अपना स्वर दोनों से कुछ ऊंचा अवश्य किए हुए है। श्रीमद् भागवत में ज्ञान और कर्म को भक्ति से नीचा स्थान प्राप्त है। उसके महात्म्य प्रकरण में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति की संतान कहा गया है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के चतुर्थ अध्याय में भक्ति की महिमा इस प्रकार वर्णित हुई है। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता भक्त्यानेकया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकानपि संभवात। भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं योग के द्वारा और न सांख्य ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ। मेरी प्राप्ति का सुलभ साधन तो भक्ति है। गीता अध्याय 11 श्लोक 48, 53 और 54 में इस पक्ष का लगभग इन्हीं शब्दों में समर्थन करती है। द नियरेस्ट रोड टू गॉड इज थ्रू द ग्रेट ऑफ लव। एंगुलस सिलिसस कोटेड बाय वेरफेल इन हिज बिटवीन हेवन एंड अर्थ पेज 114। एक निष्ठा से की हुई मेरी भक्ति चांडाल तक को पवित्र कर देती है। इसके पश्चात श्लोक 24, 25 और 26 में लिखा है कि जो गदगद वाणी से द्रवित चित्त हो, कभी रोता हुआ, कभी हंसता हुआ, कभी लज्जा को छोड़ गाता हुआ और नाचता हुआ मेरी भक्ति में निरत होता है, वह इस निखिल विश्व को पवित्र कर देता है। जैसे अग्नि द्वारा स्वर्ण का मल दूर होकर फूकने पर स्वर्ण अपने रूप में मिल जाता है, उसी प्रकार मेरे भक्ति योग से कर्म विपाक को दूर करता हुआ आत्मा मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मेरे पवित्र चरित्रों का श्रवण एवं ध्यान करता हुआ आत्मा जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, वैसे ही वैसे अंजनांजित आँखों की तरह वह सूक्ष्म वस्तु के दर्शन करने लगता है। श्रीमद् भागवत के ऊपर उद्धृत वर्णन से भक्ति के स्वरूप के संबंध में नीचे लिखी बातें ज्ञात होती हैं। 1. भगवान भक्ति द्वारा ही प्राप्त होते हैं। 2. योग, ज्ञान, स्वाध्याय, तप अर्थात वानप्रस्थ और त्याग अर्थात संन्यास प्रभु प्राप्ति के वैसे साधक नहीं है। 3. भक्ति में एक निष्ठा होनी चाहिए। 4. भक्ति से चित्त द्रवित हो जाता है और वाणी गदगद हो उठती है। श्री मधुसूदन सरस्वती ने भी भक्ति रसायन में चित्त द्रुति को महत्ता दी है और भक्ति की परिभाषा करते हुए लिखा है, द्रुतस्य भगवत धर्मात् धारावाहिकताम् गता सर्वेशे मनसो वृत्ति भक्ति रित्यभिधीयते। 1.3 अथवा द्रुते चित्ते प्रविष्टाया गोविंदा कारता स्थिरा सा भक्ति रित्यभिहिता। 2.1 द्रुत चित्त जब आनंद पूर्ण भगवान को ग्रहण कर लेता है तब वह तद्रूप हो जाता है। इससे बढ़कर और क्या उपलब्धि होगी। 5. भक्त कभी प्रभु के वियोग में रोता है, कभी उनके संयोग से हंसता है और कभी अति मिलन भावना में लज्जा छोड़कर गाता और नाचता है। 6. भक्ति से भक्त में पवित्रता आती है जो उसके संसर्ग में आने वालों को पवित्र करने वाली है। 7. भक्ति से कर्म विपाक नष्ट होता है और उसके नष्ट होने पर भगवान प्राप्त होते हैं। 8. भक्ति में भगवान के चरित्रों का श्रवण एवं ध्यान करना चाहिए, इससे आत्मा शुद्ध होता है। 9. शुद्ध हुआ आत्मा ईश्वर जैसी सूक्ष्म वस्तु के दर्शन करता है। ऊपर लिखी बातों में संख्या 2 निषेधात्मक है, क्योंकि वह पितृ यान के अंतर्गत भी आ सकती है, यद्यपि देव यान के लिए भी उसका महत्व कम नहीं है। पितृ यान के कर्मनिष्ठ पथिक ज्ञान, स्वाध्याय, योग, तप एवं त्याग का समावेश अपने जीवन में करते हैं। संख्या 3, 4, 5 और 8 में भक्ति के अंगों का निरूपण हुआ है। संख्या 6, 7 और 9 में भक्ति का परिणाम बताया गया है। पवित्रता का संपादन, कर्म विपाक का विनाश तथा सूक्ष्म वस्तुओं का साक्षात्कार भक्ति द्वारा होता है। संख्या 1 के अनुसार भक्ति ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। इन सभी बातों का परवर्ती भक्ति साहित्य पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। नारद भक्ति सूत्र 7 कर्म ज्ञान योग्येभ्यो अप्यधिक तरा 25 तथा शांडिल्य भक्ति सूत्र तदेव कर्मी ज्ञानी योगीभ्य आदि के शब्दार्थ 22 में भागवत के ही अनुसार भक्ति को कर्म ज्ञान और योग से ऊंचा पद दिया गया है। सूत्र संख्या 25 से 40 तक नारद ने विषय त्याग, संग त्याग, अव्यावृत भजन, भगवत गुणों का श्रवण और कीर्तन, दुर्लभ अगम्य अमोघ सत्संग, पुण्यात्माओं की कृपा, महत कृपा अथवा भगवान की कृपा के एक कण का भक्ति के साधनों के रूप में वर्णन किया है, जो ऊपर वर्णित भागवत की संख्या 3, 4, 5 और 8 में बताए साधनों के समान है। सूत्र संख्या 68 में उल्लिखित घंटावरोध, रोमांच, अश्रु और आलाप भागवत की संख्या 4 और 5 के समान है। भक्ति सूत्र पावयंती कुलानी पृथ्वी च 68, तीर्थिम कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, संशास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि 69 में वर्णित भक्ति का फल संख्या 6 के समान है। भक्तों के भेद तथा लक्षण। सामान्य रूप से भक्तों के 3 भेद हो सकते हैं, विधि के अनुगामी, निषेध परक तथा साधारण। साधारण भक्त दैनिक आचार के रूप में केवल प्रथा के निर्वाह के लिए भक्ति करते हैं, जैसे धोखा देना या खाना पूरी करना, अर्थात जैसे तैसे नाम मात्र के लिए बिना मन लगाए हुए भी पूजा परिपाटी का पालन करना कहा जा सकता है। विधि के अनुगामी भक्त नियत समय पर नियत स्थान में शास्त्रीय विधि विधानों के अनुकूल अपने इष्ट देव का अर्चन, पूजन, ध्यान आदि करते हैं। निषेध परक भक्ति में दुस्संग अर्थात भक्ति विद्वेषी ज्ञान, भक्ति के प्रतिकूल आचार तथा काम, क्रोध, मोह आदि का त्याग अपेक्षित है। नारद भक्ति सूत्र संख्या 43 और 44 में निषेधियों का वर्णन आया है। सूत्र 45 में लिखा है कि यदि ये निषेध काम क्रोध आदि तरंगित भी हो गए तो सब वर्गियों का सांस पाकर समुद्र का रूप धारण कर लेंगे। निषेध परक भक्तों में हम उन व्यक्तियों को भी ला सकते हैं जिन्होंने भगवान से द्वेष तथा मर्यादा मान्यता का निषेध करके मुक्ति पाई थी। शांडिल्य भी सूत्र संख्या 6 में प्रभु के प्रति शत्रु के द्वेष को राग में सम्मिलित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रभु के साथ भक्त का द्वेष संबंध भी मुक्ति का कारण होता है। नारद भक्ति सूत्रों में सूत्र संख्या 15 से 18 तक भक्तों के लक्षण दिए हैं, जिनमें पूजा कथा आदि में अनुराग, अविरोध पूर्वक आत्मरति, निखिल आचारों को प्रभु के अर्पित कर देना तथा प्रभु के विस्मरण में परम व्याकुल हो उठना परिगणित हुए हैं। गीता 7:16 के अनुसार भक्त 4 प्रकार के हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन चारों में ज्ञानी भक्त को ही भगवान ने श्रेष्ठ स्वीकार किया है। सनक, सनंदन, सनत कुमार और नारद ऐसे ही ज्ञानी भक्त थे, प्रशांत और गंभीर। ज्ञानी भक्त उच्च कोटि के विरागी भी होते हैं। नारद भक्ति सूत्रों के अनुसार भक्ति परा और गौणी 2 प्रकार की है। शांडिल्य भक्ति सूत्र संख्या 72 गौणम त्रैविध्य मितरेण स्तुति अर्थत्वात् साहचर्यम तथा नारद भक्ति सूत्र संख्या 56 गौणी त्रिथा गुण भेदात् आर्तादि भेदाद्वा में गौणी भक्ति 3 प्रकार की मानी गयी है। सात्विकी, जिसमें कर्तव्य कर्म समझकर भक्ति की जाती है। 2 राजसी, जो किसी कामना से प्रेरित होकर की जाती है। और 3 तामसी, जो किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से की जाती है। गीता के ऊपर उल्लिखित जिज्ञासु, आर्थ और अर्थार्थी भक्त क्रमशः गौणी भक्ति के इन्हीं 3 प्रकारों के प्रतिरूप हैं। ज्ञानी भक्त पराभक्ति का अधिकारी है। श्रीमद् भागवत 3:29 में श्लोक 7 से 14 तक भक्तों के सगुण और निर्गुण 2 भेद करके सगुण भक्तों के सात्विक, राजस तथा तामस 3 भेदों का वर्णन किया गया है। यही सकाम भक्त भी कहलाते हैं। निर्गुण भक्त में प्रभु के प्रति निष्काम भाव से अनन्य प्रेम रहता है। निर्गुण भक्त गीता के ज्ञानी भक्त के समान है। भक्ति क्या है? नारद भक्ति सूत्र संख्या 2 साथ वस्मिन परम प्रेम रूपा और शांडिल्य भक्ति सूत्र संख्या 2 सा परानुरक्तिरीश्वरे के अनुसार प्रभु में पराकाष्ठा की अनुरक्ति रखना ही भक्ति है। भागवत 1:2-6 में भी भक्ति की यही परिभाषा दी गई है, यथा स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति भोक्षते अहैतुक के प्रतिहता ययात्मा संप्रति गति, अर्थात भगवान में हेतु रहित निष्काम एक निष्ठायुक्त अनवरत प्रेम का नाम ही भक्ति है। यही पुरुषों का परम धर्म है, इसी से आत्मा प्रसन्न होती है। भक्ति रसामृत सिंधु पूर्व विभाग लहरी 2 के अनुसार परा भक्ति सर्वोच्च कोटि की और सिद्धावस्था की सूचक है। गौणी भक्ति साधनावस्था के अंतर्गत है और 2 प्रकार की है, वैधी तथा रागानुगा। वैधी भक्ति में शास्त्रानुमोदित विधि निषेध का अनुसरण करना पड़ता है। शासने नैव शास्त्रस्य सावैधी भक्ति रुच्यते लहरी 2 श्लोक 4। रागानुगा भक्ति भावना राग अथवा प्रेम पर अवलंबित है। वैधी भक्ति मर्यादा का मार्ग है जिसमें भक्त ईश्वर के ऐश्वर्य ज्ञान से संपन्न रहता है। रागानुगा भक्ति 2 प्रकार की है, काम रूपा और संबंध रूपा। गोपियों की भक्ति काम रूपा थी जिसमें कृष्ण सुख के अतिरिक्त अन्य भावना नहीं रहती। संबंध रूपा भक्ति भगवान और भक्त के संबंध की दृष्टि से 4 प्रकार की है, दास्य सख्य वात्सल्य और दाम्पत्य। दास्य भक्ति के आदर्श हनुमान है, सख्य भक्ति के आदर्श उद्धव अर्जुन और सुदामा है, वात्सल्य भक्ति का आदर्श नंद यशोदा वासुदेव और देवकी में दिखाई देता है, राधा और रुक्मिणी दाम्पत्य भाव वाली भक्ति की आदर्श है। जीव गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि के अनुसार दाम्पत्य भाव ही माधुर्य भाव है। इसी भाव से विभावादि के संयोग द्वारा निष्पन्न रस मधुर उज्ज्वल या भक्ति रस कहलाता है। रूप गोस्वामी ने लौकिक माधुर्य से भक्ति रस की माधुर्य भाव में अंतर किया है। लोक में माधुर्य भाव सबसे नीचे, उसके ऊपर वात्सल्य, फिर सत्य, फिर दास्य और सबसे ऊपर शांत रस है। पर भक्ति रस में चित जगत के निम्नतम भाग में शांत स्वरूप निर्गुण ब्रह्मलोक, उसके ऊपर दास रूप वैकुंठ तत्व, उसके ऊपर गोलोकस्थ सख्य रस और सबके ऊपर मधुर रस पूर्ण वृंदावन है, जहाँ परम पुरुष प्रकृति रूपा वृजांगनाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। वैधी और रागानुगा दोनों प्रकार की भक्ति साधनावस्था के अंतर्गत है। जब भक्त को भगवान से प्रेम करने का व्यसन हो जाता है तभी रागानुगा भक्ति की कृतार्थता समझनी चाहिए। नारदीय भक्ति सूत्रों के अनुसार यही पराभक्ति की अवस्था है। भक्ति रसामृत सिंधु में भी रागानुगा भक्ति को पराभक्ति के लिए अंतिम सीढ़ी माना गया है। नारद भक्ति सूत्र संख्या 55 के अनुसार पराभक्ति की भूमिका में पहुंचकर भक्त प्रभु प्रेम में विभोर हो उसी को देखता है, उसी को सुनता है, उसी को कहता है और उसी की चिंता करता है। तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिंतयति। सूत्र संख्या 51 और 52 के अनुसार प्रेम का यह स्वरूप मुख के आस्वाद की भांति अनिर्वचनीय है। इस अवस्था में पहुंचा हुआ भक्त गुण रहित कामना शून्य प्रतिक्षण अविच्छिन्न रूप से बढ़ता हुआ सूक्ष्मतर और अनुभव रूप हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु महिमा ज्ञान युक्त त्याग विधि मार्गानुसारिणाम रागानुगाश्रितानां तु प्रायशः केवलो भवे पूर्व भाग 4-5। ये समान आचार्य वल्लभ ने भी ब्रह्मसूत्र 3:3-39 के अनुभाष्य में भक्ति के विहिता और अविहिता 2 भेद किए हैं। महात्म ज्ञान युक्त ईश्वरत्वेन प्रभव निरुपधि स्नेहात्मिका विहिता अन्यतो अप्राप्तत्वात् कामाद्युपाधिजा सातु अविहिता, अर्थात प्रभु में महात्म ज्ञान युक्त निरुपाधि स्नेह विहिता भक्ति है और कामादि उपाधियों के संसर्ग से अविहिता भक्ति होती है। आचार्य वल्लभ ने दोनों प्रकार की भक्ति को मोक्ष की साधिका माना है। समाधि उपाधियों में उन्होंने न केवल पुत्रत्व आदि के संबंध को स्वीकार किया है प्रत्युत द्वेषादि संबंध को भी। उनके मतानुसार भगवत संबंध मात्रस्य मोक्ष साधकत्वम्, भगवत संबंध मात्र मोक्ष का कारण है। रावण पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान से द्वेष करके ही मोक्ष को प्राप्त हुआ था। नारद भक्ति सूत्र संख्या 65 के शब्द काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन् नैव करणीयम् भी इसी तथ्य का समर्थन कर रहे हैं। आचार्य वल्लभ की विहिता भक्ति नारद और रूप गोस्वामी की पराभक्ति के समकक्ष है तथा अविहिता गौणी भक्ति के रागानुगा भेद के समान। शांडिल्य ने भक्ति सूत्र संख्या 10 में भक्ति के मुख्य और इतरा 2 भेद किए हैं। सूत्र संख्या 20 में इतरा को ही उन्होंने गौणी नाम दिया है और लिखा है कि इससे साधक समाधि सिद्धि तक की पहुंच पाता है। सूत्र संख्या 21 के अनुसार इसमें राग बना रहता है, फिर भी यह हेय नहीं है, क्योंकि जैसे उत्तम का साथ करने से कुछ न कुछ उत्तमता प्राप्त होती ही है, वैसे ही गौणी भक्ति में संसर्ग तो पुरुषोत्तम का ही रहता है। सूत्र 18 में गौणी भक्ति के अंतर्गत देव भक्ति को भी प्रभु भक्ति की सहचरी होने के कारण स्थान प्राप्त हुआ है। नारद ने सूत्र संख्या 21 और शांडिल्य ने सूत्र संख्या 14 में भक्ति के आदर्श के लिए ब्रज गोपिकाओं वल्लभियों का उदाहरण दिया है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने भक्ति रस की प्रतिष्ठा करते हुए उसके 5 भेद किए हैं, शांत भक्ति, प्रीत भक्ति, प्रेयो भक्ति, वत्सल भक्ति और मधुरा भक्ति। शांत भक्ति में भगवान के शांत से दुर्गुत स्वरूप का ध्यान किया जाता है, वेदादि का पठन, विदिष्ट स्थान का सेवन इससे उद्दीपन है। अंतर्वृत्ति विशेष और ज्ञानी भक्तों का संसर्ग अनुभव है। मौन, निरहंकारिता, निरपेक्ष, निर्ममता आदि इसके संचारी भाव है। प्रीत भक्ति में द्विभुज या चतुर्भुज गोकुल वासी कृष्ण से प्रेम किया जाता है, जो ईश्वर परम आराध्य सर्वज्ञ दृढ़ व्रत समृद्ध क्षमाशील शरणागत पालक और प्रेम वश है। उनके दास 4 प्रकार के हैं: 1 अधिकृत जैसे ब्रह्म शंकर आदि, 2 आश्रित जैसे काली जरासंध बद्ध नृप आदि, ये भी शरण ज्ञानीचर और सेवानिष्ठ 3 प्रकार के हैं। 3 पारिषद जैसे उद्धव और दारुक, 4 अनुग जैसे ब्रज के गोप। प्रेयो भक्ति में सखा भाव की प्रधानता है, इसमें हरि तथा उनके सखा श्रीदामा वसुदामा आदि की क्रियाएं प्रमुख हैं। वत्सल भक्ति में प्रभु को वत्स के रूप में समझकर उनकी कौमार आदि वय के अनुरूप द्वेष शैशव चापल्य जल्पित स्मित लीला आदि उद्दीपन का कार्य करते हैं। गुरु माता पिता आदि के रूप में भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम प्रकट किया जाता है वही स्थायी भाव है। मधुरा भक्ति में कृष्ण का अनुपम सौंदर्य आलम्बन का कार्य करता है। गोपिका रूपी भक्तों के अंदर रसी भाव का जागरण स्थायी भाव है तथा राधा गोपी आदि के साथ प्रेम क्रीड़ा और रासलीला अनुभव है। मुरली वादन विभाव का कार्य करता है। भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन पाया जाता है जो इस प्रकार है: श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम 7-5-23। प्रभु के गुणों का श्रवण, उनका कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य भाव, प्रणति, सखा भाव और आत्मनिवेदन भक्ति के ये 9 प्रकार हैं। नारद भक्ति सूत्र संख्या 82 के आधार पर भक्ति एक प्रकार की होती हुई भी 11 प्रकार की है: गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्य शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विरहा शक्ति। इसके गुण महात्म्य में भागवत की नवधा भक्ति के श्रवण और कीर्तन का समावेश हो जाता है। अर्चन पाद सेवन और वंदन पूजा शक्ति में आ जाते हैं। स्मरण स्मरणा शक्ति में, दास्य दास्या शक्ति में, सख्य सख्या शक्ति में और आत्मनिवेदन आत्मनिवेदना शक्ति में अंतर्भुक्त हो जाते हैं। रूपा शक्ति, कांता शक्ति और वात्सल्या शक्ति भागवत के नवधा भक्ति वर्णन में स्थान नहीं पाती। ये प्रेमा शक्ति के रूप है और सगुण भक्ति के अंतर्गत है। नवधा भक्ति के अर्जन और पाद सेवन को छोड़कर शेष 7 निर्गुण भक्ति के भी अंग कहे जा सकते हैं। परम विरहा शक्ति और तन्मयता शक्ति निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति की चरम अवस्थाएं हैं। संत सुंदरदास ने अपने ज्ञान समुद्र नामक ग्रंथ के द्वितीय उल्लास में छंद संख्या 4 से लेकर अंतिम छंद संख्या 56 तक जो भक्ति का वर्णन किया है उसमें भागवत की नवधा भक्ति को कनिष्ठ कोटि की माना है और निर्गुण संप्रदाय के संत होने के कारण उन्होंने पाद सेवन आदि को मानसिक रूप प्रदान कर दिया है। इसके पश्चात उन्होंने मध्यम कोटि की प्रेमा भक्ति और उत्तम कोटि की पराभक्ति का वर्णन किया है। भक्ति के अंग श्रीमद् भागवत स्कंद 3 अध्याय 29 के श्लोक 15 से 19 तक, भागवत स्कंद 3 अध्याय 29 निवेशिते न निमित्ते न स्वधर्मेण महीयता क्रिया योगेन शस्तेन नाति हिंस्रेण नित्यशः मध्यष्ण्य दर्शन स्पर्श पूजा स्तुत्यभिवंदनै भूतेषु मद्भावनया सत्वेन संगमेन च महतां बहुमानेन दीनानामनुकम्पया मैत्रेया सैवात्मतुल्येषु यमेन नियमेन च आध्यात्मिकानुश्रवणान्नाम संकीर्तनाच्च मे आर्जवेनार्य संगेन निरहंक्रियया तथा सद्धर्मणो गुणैरेत परिसंशुद्ध आशयः पुरुषस्यांच साध्यति श्रुतमात्र गुणं हि माम। भक्ति के अंगों का वर्णन हुआ है जो इस प्रकार है: एक, नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन। दो, शास्त्रोक्त हिंसा रहित क्रिया योग का अनुष्ठान। तीन, भगवान के विग्रह के दर्शन, स्पर्शन, पूजा, स्तुति, वंदना और नाम संकीर्तन। चार, समस्त प्राणियों में भगवान की भावना करना। पाँच, तत्व धैर्य और असंगम वैराग्य का अवलंबन। छह, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार। सात, यम नियमों का पालन जिसमें स्वाध्याय अर्थात अध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और ईश्वर प्रणिधान अर्थात प्रभु की शरण ग्रहण करना, प्रपत्ति मार्ग या आत्मनिवेदन भी आता है। आठ, मन की सरलता और अहंकार का त्याग। नौ, सत्पुरुषों का संग। इसके पश्चात श्लोक 20 में लिखा है कि जैसे पुष्प की सुगंध वायु द्वारा उड़कर नासिका तक पहुंच जाती है, वैसे ही भक्ति के इन अंगों में तत्पर राग द्वेषादि विकारों से शून्य चित्त परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। इसी श्लोक के आगे मोहवश प्रतिमा पूजन अर्चा करने वालों की निंदा की गई है, जो कि प्रभु अंतर्यामी है, समस्त प्राणियों के अंदर विराजमान है। उन्हें छोड़कर प्रतिमा का पूजन अर्चा करना भस्म में हवन करने के समान है। नारद ने भक्ति सूत्र संख्या 34 में लिखा है, तस्या साधनानि गायन्ति आचार्यः। आचार्यों ने भक्ति के साधनों की प्रशंसा की है। ये साधन नारद के शब्दों में इस प्रकार है: तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च। 35, अव्यावृत्त भजनात्। 36, लोके अपि भगवत गुण श्रवण कीर्तनात्। 37, मुख्य तस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। 38, महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। 39, लभ्यते अपि तत् कृपयैव। 40, तस्मिस्तज्जने भेदाभावात्। 41, तदेव साध्यताम् तदेव साध्यताम्। 42, दुःसंग सर्वथैव त्याज्यः। 43, काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश सर्वनाश कारणत्वात्। 44, तरंगायिता अपि मे संगात समुद्रावयन्ति। 43, कस्तरति मायां यः संगात त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। 46, यो विविक्त स्थानं सेवते यो लोकबन्ध मुन्मूलयति निस्त्रगुण्यो भवति योगक्षेम त्यजति। 47, यः कर्म फलं त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति। 48, वेदानपि संन्यस्यति केवलं अविच्छिन्नानुरागं लभते। 49, सतरति सतरति लोकान् स्तारयति। 50, लोकहानौ चिन्ता न कार्या। 61, न तदसिद्धौ लोक व्यवहारो हेय किन्तु फलस्यागत साधनं च कार्यमेव। 62, स्त्री धन नास्तिक वैरी चरित्रम न श्रवणीयम्। 63, अभिमान दम्भादिकं त्याज्यम्। 64, वादो नावलम्ब्यः। 74, भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि। 76, अहिंसा सत्य शौच दया सिक्ख्यादिचारित्र्याणि परिपालनीयानि। 78, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तैः भगवानेव भजनीयः। 79, इन सूत्रों में सूत्र 36 तथा 61 सूत्र 79 में एकत्र हैं। सूत्र 37 की विधि भावना की पूरक, सूत्र 63 की निषेध भावना है। सूत्र 62 का फल त्याग सूत्र 48 में विद्यमान है। सूत्र 62 का लोक व्यवहार सूत्र 78 में आ जाता है। सूत्र 78 नियम की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है, अतः सूत्र 76 उसके अंतर्गत आ सकता है। सूत्र 64 और 74 सूत्र 43 के अंग बन सकते हैं। सूत्र 61 की लोक हानि कर्मफल में समा सकती है, जो सूत्र 48 में आया है। सूत्र 44 सूत्र 43 की कारण परक व्याख्या करता है। सूत्र 39, 40, 41 और 42 कारण कार्य पूर्वक एक ही हैं और सूत्र 38 से संबद्ध हैं। इस प्रकार जो नारदीय भक्ति सूत्र ऊपर उद्धृत किए गए हैं, उनसे निम्नांकित बातें भक्ति के अंग रूप में गृहित की जा सकती हैं। एक, विषम त्याग तथा विषय संग विषयाशक्ति का त्याग। दो, सर्वदा सभी भावों में निश्चिंत रहकर भगवान का लगातार भजन। तीन, भगवान के गुणों का श्रवण और कीर्तन नाम जप। स्त्री धन नास्तिक और शत्रुओं के चरित्र श्रवणीय नहीं है। चार, महान पुरुषों की कृपा अथवा भगवान की दया दृष्टि। पाँच, महान पुरुषों का सत्संग दुर्लभ और अगम्य है, पर प्राप्त हो जाने पर निश्चित रूप से सफलता प्रदान करता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता, अमोघ है। यह सत्संग प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता भी है। महान पुरुष भगवान के भक्त होते हैं और किसी में भेद भावना नहीं रखते, अतः महान पुरुषों का सत्संग अवश्य करना चाहिए। 6. दुष्टों का साथ सभी प्रकार से त्याज्य है, क्योंकि वह काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धि नाश और सर्वनाश का कारण है। अभिमान, दंभ आदि आसुरी वृत्तियां हैं, अतः परित्याज्य हैं। वितंडावाद दूषित वृत्तियों को उभारता है, अतः उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। 7. एकांत में रहना, संग या आसक्ति का त्याग, महान पुरुषों की सेवा, ममत्व विहीनता, लोक बंधन तथा योगक्षेम का त्याग, कर्म फल का त्याग, कर्म का भी त्याग, त्रैगुण्य वेदों का भी त्याग, निस्त्रैगुण्य प्राप्ति और भगवान में अनवरत अनुराग। 8. लोक व्यवहार अथवा फलाकांक्षा रहित होकर कर्तव्य पालन। 9. यम नियम तथा तत्संबंधी आचार का पालन, इसी में भक्ति शास्त्रों का मनन और उसके उद्बोधक कर्म भी आ जाते हैं। शांडिल्य ने नीचे लिखे सूत्रों में भक्ति के अंगों का संकेत किया है। देव भक्ति वितारस्मिन साहचर्यात। 18. हेया रागत्वादिति चेन्नोत्तमास्पदत्वात् संगवत्। 21. ब्रह्म कांडम तु भक्तौ तस्यानुज्ञानाय सामान्यात्। 26. सम्मान बहुमान प्रीति विरहे तर विचिकित्सा महिम ख्याति तदर्थ प्राणस्थान तदीयता सवर्त तद्भाव प्रातिकूल्यादीनि च स्मरणेभ्यो बाहुल्या। 45. मुख्यम तस्य हि कारुण्यम्। 49. काव्य पावित्र्यम उपक्रमात्। 59. अबंधो अर्पणस्य मुखम्। 64. ध्यान नियमस्तु दृष्टि सौकर्यात्। 65. स्मृति कीर्त्यो कथादेह। 74. एकांत भावो गीतार्थ प्रत्यभिज्ञानात्। 83. भजनीय न द्वितीय मिदम् कृष्णस्य तत्स्वरूपत्वात्। 85. अनन्य भक्त्या तद्बुद्धि। 96. इन सूत्रों से भक्ति के जिन अंगों की ओर संकेत जाता है वे इस प्रकार हैं। 1. देव भक्ति, जिसमें उत्तमास्पद महान पुरुषों का सत्संग भी आ जाता है, क्योंकि उससे भक्त दिव्यता प्राप्ति की ओर अग्रसर ही नहीं होता, उसमें दिव्यता का संचार भी होता है। सूत्र 18 और 21. 2. प्रभु के गुणों का ज्ञान, उसकी कथादि का स्मरण और कीर्तन। सूत्र 26 और 74. 3. प्रभु का सतत एकांत भाव से ध्यान। सूत्र 65 और 83. 4. प्रभु के प्रति समर्पण भावना। सूत्र 64. 5. भगवान के महत्व का ध्यान और अपनी समस्त शक्तियों को उसी के लिए लगा देना। प्रभु सेवा तथा भक्त सेवा। सूत्र 45. 6. कारुण्य भाव। सूत्र 49. 7. पवित्रता मन वचन कर्म में। सूत्र 59. सूत्र 83 से जान पड़ता है कि शांडिल्य भक्ति सूत्र गीता के पश्चात बने। शांडिल्य भक्ति सूत्रों में वह विशदता नहीं है जो नारद भक्ति सूत्रों में पाई जाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति के अंग नीचे लिखे श्लोक द्वारा वर्णित हुए हैं। अन्याभिलषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। 1.9. भगवत प्रेम का क्रम रूप गोस्वामी ने इस ग्रंथ में इस प्रकार दिया है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। 6. अथाशक्ति ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदञ्चति सात्कानामयम् प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः पूर्वभाव चतुर्थ लहरी। श्रीमदुसूदन सरस्वती ने भगवत भक्ति रसायन में यह क्रम इस प्रकार दिया है। प्रथमं महताम सेवा तद्दया पात्रता ततः श्रद्धा अथ तेषां धर्मेषु ततो हरिगुणश्रुतिः ततो रत्यंकुरोत्पत्तिः स्वरूपाधिगतिस्ततः प्रेम वृद्धि परानंदे तस्यातु स्फुरणं ततः भगवत धर्म निष्ठातः सस्मिन् सद्गुणशालिता प्रेम्णो अथ परमाकाष्ठे प्रयुदिता भक्ति भूमिका। प्रथम उल्लास। ऊपर जो भक्ति के अंग संबंधी विवरण दिए गए हैं, उनमें भक्त के अंतःकरण की पवित्रता और प्रभु परायणता प्रमुख है। अंतःकरण की पवित्रता के लिए देव भक्ति, महान पुरुषों का सत्संग और मान, दीनों पर दया और समान स्थिति वालों के साथ मित्रता, यम नियम तथा तत्संबंधी आचार का पालन, कर्म फल योग क्षेम ममत्व आदि का त्याग, दुर्जन संसर्ग से पृथक रहना और नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक समझे गए हैं। प्रभु परायणता के लिए मन की सरलता, अहंकार का त्याग, धैर्य और वैराग्य का अवलंबन, भक्ति संबंधी शास्त्रों का श्रवण, समस्त प्राणियों में भगवान की भावना करना, भगवान के गुणों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा और आत्मनिवेदन की आवश्यकता है। दुष्टों का संपर्क स्त्री विषय धन नास्तिक और शत्रुओं के चरित्रों का श्रवण प्रभु परायण बनने तथा अंतःकरण को पवित्र रखने में बाधक होते हैं। अतः ऐसे बाधकों का परित्याग करने में ही कल्याण है। कारुण्य भाव दीनों पर दया दिखाने में प्रकट होता है, जिससे अंतःकरण में पवित्रता आती है। शांडिल्य ने इसीलिए उसको मुख्य भाव माना है। कारुण्य भाव हृदय को शीघ्र द्रवित भी कर देता है। यह क्रिया भक्त को प्रभु प्रवण बनाने में अनुपम सहायता देती है। इस त्रिगुण भाव में इन सब का समावेश हो जाता है। नारद ने अपने सूत्रों में इस भाव का स्पष्ट उल्लेख किया है। रूप गोस्वामी ने सर्व भावानुकूलता के साथ भगवान के अनुशीलन को महत्व दिया है और लिखा है कि अनुशीलन ज्ञान और कर्म से आच्छादित नहीं होना चाहिए। भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी भी और भक्त की अभिलाषा नहीं की जानी चाहिए। भगवत प्रेम कैसे उत्पन्न होता है, इसके लिए उन्होंने भाव तथा तदनुकूल क्रियाओं के अनुष्ठान का एक क्रम दिया है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम भक्त के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। श्रद्धा के पश्चात प्रभु भक्तों तथा सज्जनों का साथ करना चाहिए, जिससे प्रभु के समीप बैठने का स्वभाव बने। साधु संघ के पश्चात प्रभु के गुण कीर्तन द्वारा उसका सतत स्मरण करना। इसके साथ जो बाधाएं आती हैं, जो अनिष्ट और अनर्थ भजन में व्यवधान डालते हैं, उनको दूर करना। तदनंतर भजन में निष्ठा लाना, अर्थात अन्य सभी बातों को छोड़कर प्रभु भजन में लीन होने का यत्न करना। इसके पश्चात भजन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। रुचि के पश्चात आसक्ति और आसक्ति के अनंतर भगवत भाव का जागरण होगा। इसके पश्चात प्रभु प्रेम का प्रादुर्भाव हो सकेगा। रूप गोस्वामी ने नीचे लिखे श्लोक में भक्ति जन्य सुख के अभ्युदय के लिए भुक्ति और मुक्ति दोनों की आकांक्षा के परित्याग को श्रेयस्कर समझा है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवे पूर्व भाग 2:11। भक्ति के अंगों का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है। गुरु पादाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षा दिशिक्षण 24 पूर्व भाग 2 लहरी विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमान वर्तनम सद्धर्म पृच्छा भोगादि त्याग कृष्णस्य हेतवे 25 निवासो द्वारकादौ च गंगा देरपि सन्निधौ व्यवहारेषु सर्वेषु यावदर्थानुवर्तिता 26 हरिवासर सम्मानो भात्रय स्वस्थादि गौरवम येषामत्र दशांगानां भवेत् प्रारंभ रूपता 27 संग त्यागो विदूरेण भगवद् विमुखैर्जनैः शिष्यादि अननुबंधित्वं महारंभाद्यनुद्यम 28 बहु ग्रंथ कलाभ्यास व्याख्यावाद विवर्जनम व्यवहारे अपि अकार्पण्यम शोकाद्य वशवर्तिता 29 अन्य देव अनवज्ञा च भूतानुद्वेग दायिता सेवा नामापराधा नाम उद्भवा भावकारिता 30 ऊपर उद्धृत श्लोकों से ज्ञात होता है कि रूप गोस्वामी ने भक्ति के समस्त अंगों को 2 भागों में विभाजित किया है, प्रारंभ रूपता और उत्तर रूपता। प्रारंभ रूपता के नीचे लिखे 10 अंग हैं। 1 गुरु के चरणों का आश्रय 2 उससे भगवान कृष्ण की भक्ति की दीक्षा के संबंध में प्रारंभिक शिक्षण 3 विश्वस्त होकर गुरु की सेवा करना 4 संतों के पथ का अनुसरण 5 सद्धर्म के जानने की इच्छा 6 भगवान कृष्ण के लिए भोगादि का त्याग 7 द्वारका अथवा गंगा आदि के समीप निवास 8 जितना आवश्यक है अर्थात जितने से मतलब है उतना ही समस्त व्यवहारों में बरतना 9 हरि दिवस एकादशी का सम्मान 10 धात्री अर्थात आंवला या गाय और पीपल आदि के प्रति गौरव की भावना। उत्तर रूपता में नीचे लिखे 9 अंग हैं। 1 भगवान से विमुख मनुष्यों के संग का दूर से ही परित्याग 2 शिष्यादि बनाने के झमेले में न पड़ना 3 बहुत बड़े आरंभों अनुष्ठानों के लिए उद्यम न करना 4 अनेक ग्रंथ तथा कलाओं के अभ्यास व्याख्या एवं बाद से पृथक रहना 5 व्यवहार में भी उदारता 6 शोकादि के वशीभूत न होना 7 किसी भी प्राणी की अवज्ञा न करना 8 किसी भी प्राणी को भय न पहुंचाना 9 भगवान की सेवा तथा नाम जप में किसी प्रकार के अपराध को उत्पन्न न होने देना। उपर्युक्त विवरण में पूर्वोक्त आर्ष ग्रंथों के विवरणों का ही अनुसरण किया गया है, किसी नवीन तथ्य का संकेत नहीं पाया जाता। उत्तर रूपता के 4th अंग में अनेक ग्रंथों के अभ्यास को भी वर्जनीय समझा गया है, जो स्वाध्याय का विरोधी प्रतीत होता है। संभवतः लेखक का ध्येय विभिन्न मतावलंबी ग्रंथों के विवाद में न पड़ने का है। प्रारंभ रूपता के 5th अंग में सद्धर्म पृच्छा को इसीलिए आवश्यक समझा गया है। भक्त का जो कुछ पूछना है और सद्धर्म के संबंध में जो कुछ जानना है, उसे वह गुरु मुख से पूछ और सीख लेगा। स्वाध्याय के अंतर्गत मत मतांतरों के झगड़ों से पृथक रहते हुए अपने धर्म के ग्रंथों का अध्ययन या गुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेना ही अभिप्रेत जान पड़ता है। पीपल तथा आंवले के वृक्ष का सम्मान आर्ष विवरणों में स्थान नहीं पाता, यह परवर्ती काल की देन है। वैष्णव संप्रदाय में भुक्ति एवं मुक्ति की स्पृहा का परित्याग बल पकड़ता गया है। वैदिक भक्ति में अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति आवश्यक समझी गई है। त्याग भाव से भोग भोगते हुए त्रिविध प्रकार के दुखों से परित्राण पाना मानव जीवन का सर्वोत्तम ध्येय था। वैष्णवों ने जिस भक्ति का प्रवर्तन एवं प्रचलन किया उसमें भगवत भजन ही एकमात्र आदर्श बन गया। भुक्ति और मुक्ति अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों पीछे पड़ गए। गुरु सेवा पर भी आवश्यकता से अधिक बल दिया गया, जिससे स्वाध्याय की प्रवृत्ति को ठेस पहुंची और विभिन्न वादों के परिशीलन से तत्व की प्राप्ति में जो सहायता मिलती है वह भी दूर हो गई। यदि गुरु इस संबंध में विशेष रूप से जागरूक है, स्वाध्यायशील और तत्व ज्ञाता है तब तो लाभ हो जाएगा, अन्यथा दोनों के ही अंध गर्त में गिरने की आशंका है। नारद और शांडिल्य जैसे ऋषियों ने भी स्वाध्याय को वर्जनीय नहीं समझा है। श्रीमद् भागवत भी उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखता है। स्वाध्याय यम नियमों के अंतर्गत आता है जो योग के अंग हैं। 16वीं शताब्दी में वैष्णवों के जो संप्रदाय भक्ति का प्रचार कर रहे थे उनका एक उद्देश्य योग मार्ग तथा ज्ञान मार्ग का खंडन करना भी था। रूप गोस्वामी के ऊपर उद्धृत भक्ति अंग विवरण में इसी हेतु ये बातें आ गई हैं। भक्ति के अंगों में आत्मनिवेदन मुख्य है, इसी के द्वारा भक्त प्रभु के चरणों का सानिध्य प्राप्त करता है। प्राचीन आचार्यों ने इसे 6 भागों में विभाजित किया है। अनुकूल का संकल्प अहिर्बुद्ध ने संहिता 37 27 28, प्रतिकूल का त्याग, गोपृत्व वरण, रक्षा का विश्वास, आत्मनिक्षेप और कार्पण्य। भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए जो वातावरण अनुकूल है उसी में रहने के लिए भक्त की जो निश्चित धारणा बनती है वही अनुकूलता का संकल्प कहलाती है। जैसे एकांतवास, सत्संग, भक्ति संबंधी शास्त्रों का स्वाध्याय अथवा श्रवण और भगवान की कीर्तन आदि में सम्मिलित होना। जिस वातावरण से भक्ति भावना का उत्थान नहीं होता प्रतीत विनाश होता है उसका परित्याग कर देने में ही कल्याण है, यही प्रतिकूल का त्याग है। जैसे दुष्टों के साथ में न रहना, नास्तिकों के चरित्रों को न सुनना, विषय वासना में न फंसना आदि, प्रभु को रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना, गोपृत्व वरण और उसकी रक्षण शक्तियों में अटल विश्वास का होना रक्षा का विश्वास है, आत्मनिक्षेपण आत्मसमर्पण का नाम है और कार्पण्य भक्त का दैन्य है। आत्मनिवेदन में भक्त प्रभु के आगे नग्न हो जाता है, अपना हृदय खोलकर प्रभु के आगे रख देता है, वह प्रभु से उसकी सेवा में रहने योग्य परिस्थिति उत्पन्न करने की प्रार्थना करता है। विपरीत आचरण तथा प्रभु से विमुख कराने वाले स्त्री पुत्र धन आदि से बचने के लिए निवेदन करता है, प्रभु तुम्हें छोड़कर मैं और कहीं न जाऊं, मैंने तुम्हारा पल्ला पकड़ लिया है, तुम्हारे पतित पावन विरुद्ध को वरण किया है, हे नाथ अब मेरी लाश तुम्हारे ही हाथ में है, इस प्रकार की विनय करता है। कभी प्रभु की रक्षण शक्तियों में अविचल विश्वास प्रकट करता हुआ उनके ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत करता है और अपनी घोर निराश दशा में आपत्तियों से प्राण पाकर इस विश्वास को दृढ़ भूमि पर प्रतिष्ठित भी देखता है। और अंत में प्रभु के महात्म्य के सामने भक्त जब अपने कार्पण्य को दैन्य को परम असहाय अवस्था को रखता है तो क्या प्रभु चुप बैठा रहता है? भक्त रुदन करे, आर्द चित्कार करे और भगवान उसके हृदयगत हाहाकार को सुनकर भी अंत ना कर दे वह भगवान कैसा? प्रभु सत है, व्यक्तित्व वाले हैं, चित्त हैं, ज्ञानमय हैं, समझने और समझाने वाले, सुनने और सुनाने वाले हैं, उन्हें अभिमान के द्वेष और दैन्य से प्रेम है। ईश्वरस्याप के अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, नारद भक्ति सूत्र 27। वे भक्त की पीड़ित पुकार को सुनते हैं और अपनी आनंदमयता का एक अंश उसे प्रदान कर समस्त दुख द्वंद्वों का शमन कर देते हैं। उनकी करुणा का एक कण ही भक्त के क्लेश कलाप को काटने में समर्थ है। आत्मनिवेदन का मनोवैज्ञानिक आधार। भक्ति के अंगों में हमने अंतःकरण की पवित्रता और प्रभु परायणता को प्रमुखता दी है। आत्मनिवेदन द्वारा भक्त को ये दोनों बातें सहज सिद्ध हो जाती हैं। प्रभु के आगे अपने हृदय को खोलकर रखना, अपनी समस्त निर्बलता का उद्घाटन मनोविज्ञान में आत्मनिरीक्षण या अंतर्दर्शन इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है। अपने दोषों का स्वयं विश्लेषण करने से उनका समग्र रूप अनावृत हो उठता है और उनके मूल का अभिज्ञान भी हो जाता है। दोष दर्शन दोषों को दूर करने का अनुपम साधन है। दोष के कारणों का, उसके मूल में कार्य करने वाली प्रवृत्तियों का ज्ञान साधक के हाथ में ऐसा अस्त्र दे देता है जिससे वह पाप काश को काट सके, परंतु केवल विश्लेषण क्रिया कोरा कारण ज्ञान साधक को लक्ष्य प्राप्ति कराने में अक्षम है। भक्त को अपने दोषों का ज्ञान है, पर परिस्थिति जन्म जन्मांतरों के संस्कार उसे पाप पथ से नहीं हटने देते। आत्मनिवेदन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यहीं पर भक्त को सहायता के लिए आ पहुंचता है। जब आत्मनिवेदन करते हुए भक्त अपनी पाप प्रवृत्ति का परित्याग करने में और अशक्तता का अनुभव करने लगता है और अपनी विवशता से खींच कर दुखी हो उठता है, इतना दुखी कि उसका परिताप तापमान की डिग्री का स्पर्श करने लगे, तभी उसका दुख उफन कर अपना प्रवाह मार्ग खोज लेता है। यह मार्ग अश्रुधारा है। जिस भक्त ने परिताप की गंभीर अनुभूति से उत्पन्न इस अश्रुधारा में स्नान कर लिया, उसके सब पाप भूल जाते हैं। कभी कभी प्रभु को स्वीकार करके भी भक्त माया के मोहक रूप की ओर आकर्षित हो जाता है, परंतु जब आत्मनिरीक्षण की घड़ियों में बैठकर चिंतन करता है तो अपने पतन पर उसे घोर पश्चाताप होता है। इस ताप के समय भी उसकी यही दशा होती है, वह रो रो कर प्रभु के चरणों में अपनी विवशता का उल्लेख करता है। इस निवेदन में मन के इस मंथन में अश्रु रूपी मोती निकल कर उसके सारे मैल को काट देते हैं, उसकी अशक्तता नष्ट हो जाती है, वह पुनः प्रभु प्रार्थना में निरत हो जाता है। जब मल हट गया, दोष दूर हो गए, पाप पृथक हो गया, तो अंतरात्मा स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल और दूध के समान पवित्र हो जाता है। आत्मनिवेदन इस प्रकार उसे पवित्रता तक पहुंचा देता है। प्रभु परायणता इसी के आगे का पड़ाव है। विलियम मैकडूगल ने अपने ग्रंथ एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के तीसरे अध्याय के पृष्ठ 43 पर जो सहज वृत्तियाँ और भाव दिए हैं, उनमें एक सहज वृत्ति है आत्महीनता, सेल्फ एब्सेंटमेंट, जो नम्रता या अधीनता, सब्जेक्शन का भाव उत्पन्न करती है। भक्ति भावना इसी सहज वृत्ति और उससे उत्पन्न भाव पर अवलंबित है। जेम्स एस रॉस ने अपने ग्रंथ ग्राउंड वर्क ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के पृष्ठ 64 पर इस वृत्ति को यही नाम सबमिशन दिया है, और इसके समानांतर जो क्रिया उत्पन्न होती है उसे नेगेटिव सेल्फ फीलिंग कहा है। इसका अर्थ है अपने को किसी से कम समझना। निषेधात्मक आत्मानुभूति में मानव अपने को दूसरों से शक्ति और ज्ञान में हीन समझता है। इस दिशा में उसे अनेक व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली और ज्ञानी दिखाई देते हैं, पर मानवों में जिसे सबसे अधिक ज्ञानी या शक्तिशाली समझा जाता है, वह भी अवसर पड़ने पर अपने से अधिक शक्तिशाली और सज्ञान किसी अज्ञात सत्ता का अनुभव करने लगता है। इस सत्ता को शक्तियों की भी शक्ति, ज्ञान का भी ज्ञान, समस्त सिद्धांतों का एक प्रमुख सिद्धांत, समस्त विचारों का स्रोत, सृष्टि का विधाता और शासक, समस्त अस्तित्वों का अस्तित्व, विश्वव्यापी क्रम, सामंजस्य, सौंदर्य, उत्तमता एवं भद्रता का एकमात्र उद्भव स्थान, पवित्रता का मूल स्रोत और परब्रह्म कहा जाता है। जीव को अपनी अल्प शक्ति की अनुभूति इस महान सत्ता के आगे श्रद्धा से झुका देती है। जो जीव जितना ही अधिक पवित्र होता जाता है, उतना ही अधिक उसके अंदर इस सत्ता के प्रति पूज्य भाव बढ़ता जाता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूजा के भाव का अर्थ पूज्य का अनुकरण करना या उसके समान बनने का प्रयत्न करना है। इसी हेतु अंतःकरण की पवित्रता का संपादन भक्त को पवित्रता के स्रोत प्रभु की ओर उन्मुख कर देता है। वह उसी के समान बनता जाता है और उससे अपनी पवित्रता उसी के संपर्क से आती हुई प्रतीत होने लगती है। प्रभु परायणता में भक्त को सब कुछ भगवानमय दिखाई देता है। मन की यह वृत्ति जीव को द्वेष भाव की ओर नहीं जाने देती। वह किससे द्वेष करे, जब तक प्रभु में ही है तो भेद भावना के लिए स्थान ही कहाँ रहा। द्वेष भेद भावना पर अवलंबित है। जब अवलंबन ही नहीं रहा, तब अवलंबन लेने वाला ठहरेगा कहाँ। अतः भक्त के अंदर द्वेष का शमन हो जाता है। द्वेष का शमन विश्व बंधुत्व भावना को जागृत कर देता है। भक्त के पवित्र अंतःकरण को प्रभु परायणता की भावना और भी अधिक पवित्र करती जाती है। उसके अंदर का रहा सहा मल भी समाप्त हो जाता है। उसकी न्यूनता न्यून होती है और भक्त पूर्णता की ओर प्रयाण करने लगता है। आत्मा पर पड़े हुए आवरण फटते जाते हैं। तम रज सत के सभी पर्दे नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निस्त्रैगुण की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लेता है। प्रभु में लगी हुई भक्त की एकतान वृत्ति भक्त के आत्मा को प्रभु के साथ सदाकार कर देती है। मनोविज्ञान की प्रसिद्ध उक्ति है, एज ए मैन थिंकेथ सो ही सो इज ही। हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। प्रभु परायणता की भावना आत्मा की कामनाओं को सबूर से हटाकर प्रभु में कर देती है। आत्मा का लक्ष्य प्रभु रह जाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि में जीवन की यह सबसे बड़ी मूल्यवान वस्तु है। संस्कृत में परब्रह्म का अर्थ ही सबसे बड़ी वस्तु है। विष्णु की महत्ता। विष्णु शब्द वृष्ल धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है व्याप्त होना। जो व्यापक है वह विष्णु है। वेद में विष्णु शब्द अपने मूल धातु अर्थ को लिए हुए कई पदार्थों का वाचक है। विष्णु सूक्त, ऋग्वेद 1:154 में जिस विष्णु का वर्णन है वह यास्क के अनुसार सूर्य है, क्योंकि सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा समस्त संसार में व्याप्त हो जाता है। सूर्य ही अपने किरणों द्वारा पृथ्वी, अंतरिक्ष और जीवलोक तीनों को प्रकाशित करता है, अतः वह त्रिविक्रम कहलाता है। कुछ विद्वान त्रिविक्रम से सूर्य के उदय, मध्य तथा अस्त होने की तीन गतियों का भी अर्थ लेते हैं। उसे उरुगाय तथा उरुक्रम भी कहा गया है। इन दोनों शब्दों का अर्थ भी विस्तृत गति वाला है। विष्णु का एक विशेषण गिरि स्थिति है, जिसका अर्थ है वाणी में अथवा पर्वत पर स्थित। सूर्योदय होते ही वाणी विलास करने लगती है और सूर्य की किरणें पर्वतमाला के शिखरों को स्वर्ण रंग से अनुरंजित कर देती हैं। सूर्य की तीन पैर मधु से पूर्ण कहे गए हैं, जो अक्षीय माण हैं और स्वधा अर्थात अपनी शक्ति में ही आलाद से ओतप्रोत हैं। सूर्य वस्तुतः सब प्राणियों के लिए मधु है, जीवन है, समस्त भुवनों को धारण करने वाला है। वह प्रजा का प्राण और जीवन शक्ति का स्रोत है। वह स्वस्थ पथ पर चलने वाला है। जो मानव दिव्यता के अभिलाषी है, देव बनने की कामना रखते हैं, उन्हें सूर्य के प्रिय पद का ही अनुसरण करना पड़ता है। विष्णु का एक परम पद भी है, जहाँ मधु का स्रोत है। भूरी श्रृंगों वाली गाय है तथा जिसे सूरी प्रज्ञाधनी विकसित मानव ही देख सकते हैं। विष्णु सूक्त के इस वर्णन में यदि हम विष्णु का अर्थ केवल सूर्य ले तो कुछ शब्दों का पूरा रहस्य नहीं खुल सकेगा। व्यापक होने से सूर्य तो विष्णु है ही, परंतु जो तत्व इस सूर्य में व्याप्त है और उस तत्व का भी जो परम तत्व है वह भी व्याप्त होने के कारण विष्णु पदवासी होना चाहिए। मधु सूर्य की किरणों में है, परंतु वहाँ वह अपने मूल तत्व से आया है, जो प्रकाशों का भी प्रकाश है, जिससे समस्त ज्योतियाँ अपनी अपनी ज्योति प्राप्त करती हैं। जो अग्नि, वरुण, विद्युत और मित्र सूर्य के तेज, इंद्रत्व और भास का मूल कारण है, उसे हमारे ऋषि देवताओं के देवता, सूर्यों के भी सूर्य और सर्व व्यापक परम प्रभु के नाम से पुकारते रहे हैं। विष्णु शब्द का यह सबसे अंतिम अर्थ है। इस अर्थ को ग्रहण करने से वेद मंत्रों में निहित वे अर्थ भी प्रकाशित होते हैं, जो अनेक विद्वानों के लिए रहस्य बने हुए हैं। ऋग्वेद 1:15-6:2-3 में विष्णु शब्द ईश्वर के ही अर्थ में आया है। वह सबसे पूर्व, पहला और जगत का उत्पादक है। हमें उसी का भजन, स्मरण और उसी के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए। उसके नाम का कीर्तन स्तोता या भक्त को यश तथा श्री से संपन्न कर देता है। यह विशेषण ईश्वर के ही हो सकते हैं, अन्य किसी के नहीं। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को विष्णु कहा गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में पुरुष को भी यज्ञ माना गया है, जिससे प्राणी, ज्ञानी तथा साध्य उत्पन्न हुए। वेद की ज्ञान राशि भी इसी यज्ञ रूप पुरुष से उत्पन्न हुई। ऋषियों ने यज्ञ का प्रारंभ इसी के अनुकृति पर किया और धर्म की स्थापना की। जीवन के समस्त नियम उन्होंने यहीं से प्राप्त किए। पुरुष सूक्त इन नियमों को प्रथम धर्म कहता है। इस सूक्त में पुरुष को सहस्त्रशीर, नेत्र और चरण वाला कहा गया है। यह पुरुष चतुष्पाद है। यह जो कुछ दिखाई देता है, अगणित तारे, सूर्य, चंद्र, ध्रुव, पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति आदि, वह सब उसका एक पाद है, एक भाग है और उसकी महिमा को प्रकट करता है। उसके तीन पाद अमृत हैं, एक पाद मर्त्य है, विनश्वर है, परंतु तीन पाद अविनश्वर हैं, एक पाद मृत्यु है तो तीन पाद जीवन हैं, एक पाद विष है तो तीन पाद मधु हैं। विष्णु सूक्त में विष्णु का परम पद मधु का उत्स है। इसका आनुषंगिक अर्थ यह भी है कि उसका अवम पद मधु नहीं विष है। पुरुष सूक्त जिसे अमृत कहता है, विष्णु सूक्त उसी को मधु कहता है। वेद में अन्यत्र इसी को तृतीय धाम भी कहा गया है और लिखा है कि इस धाम में देव अमृत का उपभोग करते हैं। इस प्रकार पुरुष सूक्त का पुरुष और विष्णु सूक्त का विष्णु दोनों एक हो जाते हैं। वैष्णव आचार्यों ने दोनों में एकता स्थापित की भी है। जिसके गर्भ में हिरण्य हो वह हिरण्य गर्भ है। हिरण्य वह ज्योति ही। इस शतपथ वाक्य के अनुसार हिरण्य गर्भ हमारे सौर जगत का सूर्य है, क्योंकि इसी के अंदर ज्योति है। ब्रह्मांड में और भी अनेक सूर्य हैं, जो स्वयं ज्योतिषमान है तथा अन्यों के लिए ज्योति विकीर्ण करते रहते हैं। सूर्य विष्णु है, अतः हिरण्य गर्भ भी विष्णु है। ऋग्वेद के हिरण्य गर्भ प्राजापत्य सूक्त 8:7-3 के अंतिम मंत्र में हिरण्य गर्भ को प्रजापति शब्द से संबोधित किया गया है। इस मंत्र के पूर्व के 10 मंत्रों में कस्मै देवाय हविषा विधेम पद छंद के अंतिम चरण के रूप में आता है, जिसमें कस्मै का अर्थ प्रजापतये किया जाता है। वस्तुतः इस शब्द में प्रश्न और उत्तर दोनों ही विद्यमान है। कह जहाँ प्रश्नवाचक कौन है, वहाँ कह वह प्रजापति ही, ऐसा उत्तरवाचक ब्राह्मण वाक्य भी है। सूर्य अथवा विष्णु प्रजाओं का प्राण, अतएव प्रजापति है, ऐसा हम पीछे लिखाए हैं। इसी आधार पर हिरण्य गर्भ प्रजापति सूक्त को वैष्णव आचार्य पूजा के अंतर्गत प्रयोग में लाते रहे हैं। हिरण्य गर्भ प्रजापति की विशेषताएं क्या हैं? सूक्त के अनुसार वह सबसे पहले विद्यमान था। जो कुछ यहाँ उत्पन्न हुआ है उसका वही पालक है, वही द्यावा पृथ्वी को धारण करने वाला है, वही बल का दाता है। समस्त देव उसी की आज्ञा का पालन करते हैं। अमृत और मृत्यु दोनों उसी के अधिकार में रहते हैं। वही निमिषवान, प्राणवान, चतुष्पद और द्विपद चार प्रकार की सृष्टि का राजा है, शासक है। हिमवान, पर्वत, समुद्र, सरिता, दिशाएं, पृथ्वी, स्वर्ग, नाक सबका वही धाता है। उसने समस्त लोक लोकांतरों को इस अंतरिक्ष में दूरी, परिमाण, गति आदि की दृष्टि से नाप कर रख दिया है। क्रंदन करते हुए द्यावा पृथ्वी अन्य युग्मों ने जिसे अपने रक्षण आश्रय के लिए पकड़ा है, जिसने कंपितों पर सहृदयता पूर्ण दृष्टि डालकर उन्हें आश्वासन दिया है, जिसके अंदर ही सूर्य उदय होकर चमकता है, विशाल जलीय शक्ति गर्भ धारण करती हुई तथा अग्नि की उत्पादिका बनकर जिसके कारण विश्व को प्राप्त हुई है, देवताओं की एकमात्र प्राण शक्ति जिसकी कृपा का फल है, यज्ञ की जननी, बलवती कर्म शक्ति जिसके कारण महत्वशालिनी बनी है, जो समस्त देवताओं में उनके ऊपर एक देव है, जिसके अन्य पृथक यहाँ कुछ भी नहीं है, वह प्रजापति हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। हिरण्यगर्भ प्रजापति के ये विशेषण अकेले भौतिक सूर्य पर नहीं घट सकते। सूक्त के अनुसार स्वयं सूर्य उस प्रजापति के अंदर उदित होता है। यही नहीं, प्रजापति ने सूर्यादि समस्त लोकों को अंतरिक्ष में नाप कर रख दिया है और उससे कोई अन्य नहीं है, अर्थात जो सर्वव्यापक है। ऐसा प्रजापति तो वही देवाधिदेव है जिसे सृष्टि का जनिता, विधाता और संहर्ता कहा जाता है। वैष्णवों ने विष्णु को इन्हीं सब विशेषणों से विशिष्ट मानकर उसे भगवान की संज्ञा प्रदान की है। वेद ने इस भगवान को अनेक नामों से पुकारा है, वही अग्नि, मित्र, वरुण, अर्यमा, इंद्र, गरुत्मान आदि नामों वाला है। ये विभिन्न नाम उसके विभिन्न गुणों को प्रकट करते हैं। इंद्र शब्द वेद में कई बार आता है और पाश्चात्य विद्वानों की सम्मति में इंद्र ही वेद का सर्वश्रेष्ठ देवता है। इसमें संदेह नहीं कि ऋग्वेद के मंत्रों का कम से कम चतुर्थांश इंद्र देवता की स्तुति से भरा पड़ा है। निरुक्त के अनुसार इंद्र शब्द वेद में कहीं इंद्रियों के अधिपति मन या आत्मा के लिए, कहीं विद्युत के लिए और कहीं सूर्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। द गॉड्स ऑफ द ऋग्वेद डू नॉट स्टैंड आउट इन क्लियर इंडिविजुअलिटी एंड डिस्टिंक्टेंस द वन फ्रॉम द अदर। दे आर पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचर, लैक कैरेक्टर एंड टेंड टू मेल्ट इन टू वन अनदर। जे एन फरहुअर, एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, पेज 15। यह कथन भी इसी उपर्युक्त मत का समर्थन करता है। इंद्र का अर्थ इनके अतिरिक्त परमात्मा भी है। यह इंद्रति परमैश्वर्यवान भवति स इंद्रः। जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ मानो इंद्र की शक्ति कार्य कर रही है। ईश्वर शब्द का भी यही अर्थ है। ऋग्वेद द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त में इंद्र का गुणगान है, जिसके अनुसार इंद्र वज्रबाहु, वज्री, रथेष्ठ, सोमपा, मरुद्वान, शचिपति, शक्र, अप्सुजित, वृत्रहन आदि नामों वाला है। उसने प्रसिद्ध होते ही समस्त देवों को अपने कर्म से विभूषित कर दिया, जिसके महान बल के सामने द्यावा पृथ्वी कांपते हैं, जो व्यथमान पृथ्वी और प्रकोपित पर्वतों को शांत करता है, जो अहि को मारकर सप्त सिंधुओं को उन्मुक्त करता है, जिसके सामने विश्व के सभी पदार्थ झुक जाते हैं, जो कृष और सबल दोनों को धन देता है, जो स्तोता ब्राह्मण का रक्षक है, जिसके बिना समर में मानव विजय नहीं प्राप्त कर पाते और युद्ध करते हुए अपनी रक्षा के लिए जिसे बार बार पुकारते हैं, जो विश्व के एक एक पदार्थ में तद्रूप बनकर समाया हुआ है, जो बड़े से बड़े अच्युतों को भी च्युत करने की शक्ति रखता है, जो दस्युओं का हंता, पापियों का संहर्ता, सुरक्षित स्थानों पर भी बैठे हुए शांति के शत्रुओं का विनाशक, याजकों और स्तोताओं का संवर्धक वज्रहस्त इंद्र है, उसी में हम सबको श्रद्धा रखनी चाहिए। इस सूक्त में आए हुए इंद्र के विशेषण उसे सर्वोच्च कोटि के देव पद पर आसीन कर देते हैं। इंद्र शब्द यहाँ भी ऊपर वर्णित कई शक्तियों का द्योतन करते हुए परमात्मा का भी वाचक सिद्ध हो जाता है। विष्णु को इंद्र का योग्य सखा भी कहा जाता है। इंद्र से युज्य सखा पद में इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा है। विष्णु अर्थात ईश्वर उसका योग्य सखा है। ऋग्वेद में अन्यत्र भी आत्मा और परमात्मा दोनों को सयुजा और सखा कहा गया है। इंद्र वृत्र युद्ध में इसी प्रकार यदि एक ओर भौतिक क्षेत्र के सूर्य और मेघ के संघर्ष का वर्णन है, तो दूसरी ओर आध्यात्मिक क्षेत्र की दैवी एवं आसुरी वृत्तियों के द्वंद्व का संकेत है। ऋग्वेद 1:52 में यदि इंद्र रजसह व्योमनः पारे कहे गए हैं, तो ऋग्वेद 7:100 में विष्णु को भी रजसा पराके कहा गया है। इंद्र देवों का राजा है तो विष्णु भी देवों में परम अर्थात श्रेष्ठ हैं। इंद्र वर्षा का देवता है और अन्न भोजन तथा चारा उत्पन्न करता है जो धन और समृद्धि के कारण है, तो विष्णु श्री और लक्ष्मी के पति हैं। राधा का अर्थ भी अन्न ईरा तथा धन है। सीता शब्द का अर्थ भी हल्के फाल से जोतने पर पृथ्वी में पड़ी गहरी रेखा खेती या धान्य से संबद्ध है। बाली द्वीप में नारायण की पत्नी श्री देवी भी धान्य की देवी मानी जाती हैं। वहाँ धान के बीज को उमा देवी तथा नवीन पौधे को गिरिनाथ कहते हैं। लक्ष्मी का अर्थ तो धन धान्य प्रसिद्ध ही है, अतः विष्णु को आगे चलकर राधापति भी कहा गया है। गोवर्धन शब्द भी अन्न की ओर संकेत करता है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत धर्म के अनुयायियों ने इन्हीं अमूर्त वैदिक भावनाओं को लेकर मूर्त रूप प्रदान कर दिया है। श्रुतियों को तो उन्होंने गोपिका बनाया ही है, वैदिक राधा शब्द को भी उन्होंने सर्वश्रेष्ठ राधा नाम की गोपी बना दिया है। इस प्रकार इंद्र और विष्णु दोनों अनेक समान विशेषताओं से युक्त हैं। दोनों ने साथ रहकर असुरों से युद्ध किया है। कुछ बातें अवश्य ऐसी हैं जो एक को दूसरे से पृथक करती हैं। यथा इंद्र को त्रिविक्रम कहीं भी नहीं कहा गया है। यह विशेषण विष्णु के साथ ही संयुक्त है और भावी पौराणिक गाथाओं का आधार है। अतः जो व्यक्ति वेदार्थ की प्रणाली से परिचित है, उन्हें वेद में आए इंद्र विष्णु तथा अन्य शब्दों के अर्थ करने में कुछ भी कठिनाई नहीं पड़ती। ऐतरेय ब्राह्मण 1.1 में अग्नि को अवम और विष्णु को परम देव कहा गया है। इन दोनों के बीच में अन्य सब देव हैं। इस स्थल पर विष्णु के सूर्य और परम देव परब्रह्म दोनों अर्थ लग सकते हैं। विष्णु के त्रिविक्रम नाम को लेकर ऐतरेय ब्राह्मण 6.3.15 और शतपथ ब्राह्मण 1.9.3.9 में एक कथा गढ़ी गई है जो इस प्रकार है। इंद्र और विष्णु दोनों का असुरों से युद्ध हुआ है। असुरों को जीतकर इंद्र और विष्णु बोले, आओ हम आपस में अपना अपना क्षेत्र चुन लें। असुरों ने कहा तथास्तु। इंद्र कहने लगे, विष्णु तीन पैर चलने में जितना क्षेत्र घेर लें उतना हमारा, शेष तुम्हारा अर्थात असुरों का। विष्णु ने तीन पैरों के रखने में ही इन समस्त लोगों को नाप लिया, लोगों के साथ वेदों को भी। वामन पुराण में वामनावतार के साथ इसी प्रकार की कथा संबद्ध है। वामन का रूप लघु है, परंतु वही फैलकर विष्णु अर्थात व्यापक रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार की कथाओं में अलंकारों द्वारा सूक्ष्म तत्वों को समझाने का प्रयत्न किया गया है। वास्तव में जो पिंड या अंड में है वही ब्रह्मांड में है। इस कथा में इंद्र और विष्णु का परस्पर सहयोग तथा उसके द्वारा दोनों की असुरों पर विजय ध्यान देने योग्य है। इंद्र यहाँ आत्मा है, विष्णु परमात्मा है। आत्मा परमात्मा के संपर्क में रहकर भक्ति योग द्वारा उसकी सहायता प्राप्त करके ही आसुरी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर पाता है। इंद्र और विष्णु की प्रतिस्पर्धा का उल्लेख परवर्ती साहित्य में अवश्य मिलता है। विष्णु पुराण में दुर्वासा के शाप से इंद्र की श्री छीनी जाती है और वह विष्णु की बन जाती है। विष्णु के अवतार कृष्ण इंद्र को पराजित करके स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को लाते हैं। भागवत के अनुसार कृष्ण इंद्र की पूजा मिटाकर गोवर्धन पूजा का प्रारंभ करते हैं। इन कथाओं में भागवत धर्म की एक विशेषता छिपी है। यह विशेषता है स्वर्ग प्राप्ति की आशा दिलाने वाले याज्ञिक कर्मकांड का खंडन और उसके स्थान पर लोक धर्म तथा भक्ति की प्रतिष्ठा करना। भागवत धर्म शीर्षक परिच्छेद में इस संबंध के पर्याप्त संकेत मिलेंगे। स्वर्ग में ऐश्वर्य है, इंद्र उसका अधिपति है। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग प्राप्ति का अभिलाषी यज्ञ करें। इस प्रकार के कथनों से भागवतों को संतोष नहीं हुआ, अतः स्वर्ग और यज्ञ दोनों के स्थान पर भक्ति तथा स्वर्ग के अधीश्वर इंद्र के स्थान पर स्वर्ग से भी बढ़कर परम पद के अधिष्ठाता विष्णु की प्रतिष्ठा भागवतों ने की और उसे वासुदेव कहकर पुकारा। महानारायण उपनिषद 1.31 में जो संभवतः ईसा पूर्व तृतीय शतक के पश्चात की निर्मित नहीं है, J.N. Farquhar एंड आउटलाइंस ऑफ द रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया पेज 49, वासुदेव को विष्णु का एक विशेषण माना गया है। दोनों का निरुक्ति जन्य अर्थ एक ही है, सर्वव्यापक असम में निवास करने वाला। भागवतों ने विष्णु के कई अवतारों की कल्पना की है और उन सब में कोई न कोई सूक्ष्म तत्व छिपा है। पीछे हमने अग्नि को, रुद्र और सोम को विष्णु माना है। अग्नि का संबंध यज्ञ से है और यज्ञो वही विष्णु हो, शतपथ ब्राह्मण के इस वाक्य से यज्ञ ही विष्णु है। अतः दोनों में एक की भावना होनी चाहिए थी, परंतु याज्ञिकों के अत्यधिक काम परक होने के कारण ऐसा संभव न हो सका। यज्ञ की पशु बलि ने भागवतों को सोम स्वरूप विष्णु के रक्षक एवं शांत भाव की ओर आकृष्ट कर दिया। हाँ, भागवतों ने अग्नि के दूसरे रूप रुद्र के साथ विष्णु की अभिन्नता का प्रतिपादन अवश्य किया। रुद्र और विष्णु एक ही हैं। इस तथ्य के पोषक वाक्य पुराण साहित्य में अनेक स्थानों पर हैं। पद्म पुराण भूमि खंड अध्याय 2 के नीचे लिखे श्लोक इस तथ्य का समर्थन करते हैं। शिवाय विष्णु रूपाय विष्णवे शिव रूपिणे शिवस्य हृदये विष्णु विष्णुश्च हृदये शिवः एक मूर्ति त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरः त्रयाणामंतरम नास्ति गुण भेदः प्रकीर्तितः। इसी संबंध में पद्म पुराण पाताल खंड अध्याय 73 श्लोक 51 भी देखने योग्य है। विष्णु पुराण 5:33-49 में भी लिखा है, अविद्या मोहितात्मानः पुरुषाभिन्न दर्शिनः वदन्ति भेदं पश्यन्ति चावयोरन्तरं हर ब्रह्म वैवर्त श्री कृष्ण जन्म खंड उत्तरार्ध 73-53 में इस एकता का प्रतिपादन इन शब्दों में हुआ है, चतुर्भुजोऽहं वैकुंठे शिवलोके शिवः स्वयं। वायु पुराण अध्याय 25 श्लोक 20-25 तक महादेव का विष्णु और रुद्र की एकता प्रतिपादन करने वाला कथन अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें जड़ एवं जंगम समग्र विश्व को रुद्र नारायणात्मक कहा गया है। रुद्र अग्नि है तो नारायण अर्थात विष्णु सोम है। एक रात्रि है तो दूसरा दिन, एक ज्ञान है तो दूसरा ज्ञेय, एक यज्ञ है तो दूसरा उसका फल। एकता जब दूसरे को प्रसन्न करने वाला है। वायु पुराण का यह कथन, माम विशन्ति त्वयि प्रीते जना सुकृतिकारिणः, तुलसीकृत रामचरितमानस के इन शब्दों की स्मृति करा देता है। शिव द्रोही मम दास कहावई सो नर तपनेह मोहि न भावई। पांच रात्रों ने जिस यज्ञ पुरुष नारायण को अपना आराध्य देव बनाया था वह विष्णु ही है। यह विष्णु वेद का ज्योति स्वरूप निर्गुण निर्विकार ब्रह्म ही है। इस तथ्य को भागवतकार ने नीचे लिखे श्लोक में अभिव्यक्त किया है, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योते निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु अध्यात्म दीपः। भागवत 10:3-24। महाभारत के तृतीय पर्व में भीम द्वारा एवं द्वादश पर्व में भीष्म द्वारा विष्णु की जो स्तुति की गई है उसमें और त्रयोदश पर्व के विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु की जो महत्ता तथा गुण वर्णित हुए हैं वे भी वैदिक विष्णु के गुणों से समता रखते हैं। विष्णु या नारायण को क्षीर सागर का निवासी कहा जाता है। यह क्षीर सागर महाभारत के नारायणी उपाख्यान का श्वेत द्वीप है। तैत्तिरीय आरण्यक 10:11 में भी नारायण शब्द परमात्मा का वाचक है। हमारी सम्मति में यही क्षीर सागर कबीर का गगन, हठ योगियों का शून्य और शैवों का मानसरोवर है। इसी को वैकुंठ और गोलोक भी कहा जाता है। नारायणी उपाख्यान में जो नारायण विश्वात्मा है और धर्म के पुत्र हैं उन्हीं को व्यास जी नर नारायण हरि और कृष्ण कहते हैं। वामन पुराण अध्याय 6 में नारायण के इन चारों रूपों के साथ अहिंसा और धर्म को संबद्ध किया गया है। शतपथ ब्राह्मण 14:1-1 में देवता तेज यश और अन्न की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, परंतु इस यज्ञ के अंतिम छोर तक सबसे पहले विष्णु ही पहुँचते हैं, अन्य कोई देव नहीं। विष्णु को इस हेतु भी सब देवताओं में शिरोमणि माना जाता है। महाभारत में इन्हें विष्णु के साथ वासुदेव कृष्ण की एकता स्थापित की गई है। इस प्रकार वैदिक देव विष्णु, जागतिक देव नारायण और ऐतिहासिक देव वासुदेव कृष्ण तीनों वैष्णव धर्म के आराध्य देव बनते हैं। गोपाल कृष्ण को की लीलाएं इन्हीं के साथ बाद में संयुक्त हो जाती हैं। वैष्णव धर्म के विष्णु हरि कृष्ण और नारायण चारों देव एक ही हैं। इस मत का प्रतिपादन ब्रह्म पुराण अध्याय 70 के नीचे लिखे श्लोकों में हुआ है, विष्णुत्वं श्रूयते यस्य हरित्वं च कृते युगे वैकुंठत्वं च देवेषु कृष्णत्वं मानुषेषु च नारायणो ह्यनन्तात्मा प्रभवो अव्यय एव च। इस संबंध में भास रचित बाल चरित का यह प्रारंभिक श्लोक भी ध्यान देने योग्य है, जिसमें विभिन्न नामों का संबंध विभिन्न युगों के साथ जोड़ा गया है। शंक क्षीर वपु पुराकृत युगे नामना तु नारायण त्रेतायाम त्रिपदार्पितम त्रिभुवनो विष्णु सुवर्ण प्रभ दूर्वा श्याम निभस रावण वधे रामो युगे द्वापरे नित्यो योजन सन्निभ कलियुगे व वह पातु दामोदर वैष्णव धर्म की विशेष प्रतिष्ठा सात्वतों के अंदर हुई। श्री कृष्ण का जन्म सात्वत वंश के ही अंतर्गत हुआ था। पांचरात्र या भागवत धर्म के प्रतिष्ठाता द्वापर के अंत में श्री कृष्ण और उनके ज्येष्ठ बंधु संकर्षण हुए। पातंजल महाभाष्य 1.4.36 में दोनों बंधुओं का आराध्य देव माना गया है, परंतु किसी प्रकार संकर्षण इस पद से हटा दिए गए और श्री कृष्ण के ही अंतर्गत विष्णुत्व का संपूर्ण समावेश हो गया। कृष्णास्तु भगवान स्वयं की उक्ति चारों ओर फैल गयी।